Tasmai Shri Gurave Nama Shri Chaitanya Manobhishtam Tapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Sudati Sva Padantikam Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
एक एक तरह से तीन श्रेणी के भक्त हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। श्लोक 5 में ये चर्चा हो रही थी, इसमें हमने कनिष्ठ और मध्यम के विषय में चर्चा किया था। वो स्थिर होता है, मध्यम भक्त जो होता है वो स्थिर होता है, वो प्रचार करता है, उसकी श्रद्धा स्ट्रांग होती है, भक्त के साथ मित्रता का व्यवहार रखता है, और जो कृष्ण भक्ति के विरोधी है उनका वो उनसे दूर रहता है। उत्तम अधिकारी के डेफिनेशन है कि जो सबके हृदय में आत्मा का या भगवान का दर्शन करता है, सबको सबको कृष्ण का दास के रूप में देखता है, और उसकी स्थिरता बड़ी तीव्र है, और साथ साथ में वो शास्त्र में भी दक्ष है, तो हर एक वस्तु को भगवान से संबंधित देखता है और उसको उसी भाव से समझता है। तो भक्त जो होता है उत्तम अधिकारी, वो मोस्टली अनक्रिटिकल होता है। अनक्रिटिकल अर्थात कभी कभी जैसे प्रभुपाद कभी क्रिटिकल एक्सरसाइज किए भी, तो उसमें ईर्ष्या या अहंकार की भावना नहीं होती, और हृदय में दुख या कष्ट के कारण कभी कभी क्रिटिसाइज किए हो, या फिर कभी उन्होंने अज्ञानता को क्रिटिसाइज किया हो, अज्ञानी को नहीं, अर्थात रोगी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, रोग को क्रिटिसाइज करना चाहिए, और या कभी कभी नए जो भक्त होते हैं उनकी श्रद्धा को सुरक्षित करने के लिए कभी कभी क्रिटिसाइज करना पड़ता है। तो प्रभुपाद का ये बहुत सारे एग्जाम्पल है उनके लाइफ में ऐसे। एक दिन एक शिष्य को श्री प्रभुपाद ने संन्यास दिया था, और प्रभुपाद ने उनका संन्यास संदेश जो था वो पोस्ट से भेजा था, वो पोस्ट से संन्यास दिया था। तो प्रभुपाद ने किसी को बताया नहीं था, लेकिन एक भक्त ने समाचार सब जगह फैला दिया। प्रभुपाद उनसे बहुत नाराज हुए। सो जो भक्तों ने प्रभुपाद को क्रोध किया था, जो प्रभुपाद को नाराज किया था, आगे जाकर फिर वो कृष्ण भक्ति में से गिर गए। तो जब भी कोई भक्त प्रॉब्लम फेस करते हो किसी भी तरह से, तो उसका रिएक्शन क्रिटिसिज्म के रूप में नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि हम कुछ ही समय में जैसे सिचुएशन से सामने वाला परेशान हो रहा है उसी सिचुएशन में कभी हम भी परेशान हो सकते हैं। इसलिए क्रिटिसिज्म इस उत्तम अधिकारी उसके चंगुल में नहीं फंसता। सो दूसरा शुद्ध अनर्थों से मुक्त होता है, आध्यात्मिक ज्ञान में साक्षात्कार प्राप्त होता है उसको, भगवान की भक्ति में बड़ी निष्ठा से गंभीरता से श्रवण कीर्तन में जुड़ा हुआ है, सिद्धांतों का चुस्त रूप से पालन कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार भी करते हैं, भौतिक भोग इंद्रिय भोग में किसी प्रकार का रुचि नहीं है, ये गुरु समान होता है, और सबको सबका हृदय परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, अपराध से मुक्त होता है, ऐसे कई सारे लक्षण कि जो एक उत्तम भक्त के उत्तम अधिकारी भक्त जो होता है उसके आचरण में देखा जाता है, उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, उनकी संगति का लाभ उठाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, उनसे अधिक चर्चा करनी चाहिए कृष्ण भक्ति की। कई बार आप देखते हो कि आप जब उत्तम अधिकारी के पास जाते हो तो अधिकतर केस में देखा जाता है कि अगर कई बार तो आपके साथ आपके लिए आपके पास बोलने के बोलने के लिए कुछ होता नहीं, प्रश्न पूछने के लिए भी कुछ नहीं, उल्टा सामने से वो प्रश्न पूछेंगे आप ठीक हो ये हो वगैरह वगैरह, दो पांच मिनट में बात खत्म आउट। लेकिन भक्तों को उत्तम अधिकारी के पास जब आप जाते हो तो उनसे आध्यात्मिक जिज्ञासा करनी चाहिए कि किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सके, तो फिर वो भक्त आपको फिर उपदेश देंगे। और अगर आप जब भक्त उत्तम भक्त देखते हैं कि जो प्रश्न पूछने वाला भक्त है वो बड़ी निष्ठा से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के उद्देश्य से बड़ी विनम्रता से प्रश्न पूछ रहा है, और प्रश्न पूछने वाला भी अगर तंदुरुस्त होता है अर्थात वो बहुत ही गंभीर या निष्ठावान होता है और उसके प्रश्न भी बड़ी रेलेवेंट होते हैं, तो फिर आध्यात्मिक जो उत्तम भक्त होते हैं आध्यात्मिक रूप से वो भी आध्यात्मिक ज्ञान का रियलाइजेशन का पूरा खजाना उनके सामने खोल देते हैं, और फिर धीरे 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 करके उसका अनुभव उसका ज्ञान उसकी भक्ति उसका साक्षात्कार उसकी श्रद्धा ये सब बढ़ती जाती है, जो भक्त उनका एसोसिएशन का फायदा उठाते हैं। और एसोसिएशन का अर्थ क्या है, उनके द्वारा जो शिक्षा ग्रहण की जाए उस शिक्षा के ऊपर चिंतन करना, उसका अभी आएगा हमारे चर्चा में आज किस प्रकार से हमें श्रवण करना चाहिए, तो उस भाव से उसका पालन भी करना, ऐसे जो भक्त होते हैं उनकी निष्ठा से सेवा करनी चाहिए। निष्ठा से उनकी सेवा करनी चाहिए, सेवा वापु की भी हो सकती है सेवा वाणी से भी हो सकती है, तो उनकी सेवा करने के प्रति समर्पित होना चाहिए, दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए दीक्षा उनसे। और इस प्रकार के जो भक्त होते हैं उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, तो इस प्रकार से हमारा व्यवहार उनके साथ होना चाहिए। तो ये कनिष्ठ मध्यम और उत्तम ये श्रद्धा के अनुसार अलग अलग एडवांसमेंट की जो श्रेणियां हैं वो डिफाइन की जाती है, तो श्रद्धा होना बड़ा आवश्यक होता है। श्रद्धा फिर जैसे 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 विकसित होता है वैसे कोई भक्त कनिष्ठ श्रेणी से मध्यम की कक्षा में आता है और मध्यम से फिर उत्तम की अवस्था तक पहुंचता है। सो प्रभुपाद कहते हैं भगवद गीता में भगवान के जो भगवान के साथ जुड़ी हुई वस्तु है भगवान के संबंधित जो भी वस्तु उसमें अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट उसको फेथ कहते हैं। चैतन्य चरितार्थ में कहा है सदा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृता हो। श्रद्धा जो है वो सदा कॉन्फिडेंट फॉर्म फेथ दैट बाय रेंडरिंग ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू कृष्णा दिस फ्रॉम चैतन्य मध्य लीला अध्याय 22 में है। तो अगर वो जो भी कृष्ण भक्ति के लिए कार्य करता है अर्थात एक दृढ़ विश्वास होना कि यदि मैं गुरु की आज्ञा का पालन चुस्त रूप से करूंगा निष्ठा से करूंगा और अगर मैं कृष्ण की सेवा करूंगा तो मुझे और किसी कार्य को संपन्न करने का अलग से प्रयास करने का कोई आवश्यकता नहीं। इफ यू आर नाइसली सर्विंग कृष्ण एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑटोमेटिकली सर्व कर्म कृत हो। सर्व कर्म कृत हो इसका अर्थ होता है कि सारे उसकी जिम्मेदारियां और उसके कर्म बहुत ही उत्तम ढंग से संपन्न किए गए हैं, ऐसा उसको समझा जाता है। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा एक श्लोक है, ततो मुकुंदम परिरथिकथम, क्या है और इस श्लोक का जो भगवान का भक्त होता है वो किसी का ऋणी नहीं होता, वो श्लोक। प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के तात्पर्य में कई अच्छे श्रीमद् भागवतम के बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक का रखा है उन्होंने कोटेशन। सो आप भक्तों को प्रयास करना चाहिए, खास करके जो भक्त प्रचार करना चाहते हैं उनको प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य में उपयोग किए गए जो श्लोक है वो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है सारे, उसका कंठस्थ करना बड़ा हेल्पफुल रहेगा। और कंठस्थ करने के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि इसको बार बार सुना जाए और उसको बार बार बताया जाए। मैं तो इसी तरह से कंठस्थ किया अभी तक, आज तक मैंने कोई भी श्लोक खोल करके कंठस्थ करने बैठा ही नहीं हूँ। So this is my experience. It helps. It's a help of time. What is that?
Is it Devarshi Bhutanam verse for me?
Yes, yes, yes. Yaad hai aapko kisi ko? Ya fir padha samne likha hua padha hai? देवर श्री भूताप प्रणाम। यस बोलिए।
बस वो इतना ही याद है, देवर श्री भूताप प्रणाम पितृणाम, जब तक बोला उतना ही, आगे का याद नहीं है।
न किं करो नायम ऋणी च राजन् सर्वात्मना ये शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिरुध्य कर्तम्। दिस इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 11 कैंटो चैप्टर 5 चैप्टर 5 टेक्स्ट नंबर 41। तो विषय का वर्णन है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसरी, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम कनिष्ठ मध्यम श्रद्धा अनुसरी। जहां कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तेहू भक्त हो बे उत्तम। इसकी कनिष्ठ श्रद्धा कोमल होती है उसको कनिष्ठ जन माना जाता है और कमे कमे फिर वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई कनिष्ठ है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो सब अनवांटेड क्रीचर, ऐसा नहीं है। वो लोग धीरे धीरे फिर वो मध्यम और फिर उत्तम बन सकते हैं। भगवान से जुड़ा हुआ भक्त वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कनिष्ठ भक्त कर्मियों से और ज्ञानियों से श्रेष्ठ है क्योंकि वो जुड़ा हुआ है कृष्ण भक्त। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। इसलिए दीक्षा विधान जो है उससे भक्ति में हमें जुड़ना चाहिए और फिर धीरे 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 कृष्ण भक्ति में हम आगे बढ़ते जाएंगे। दिव्य ज्ञानम यथोद्या कुरियात पाप से संक्षय तस्मा दीक्षित साप्रोक्ता देशी कई तत्व को विधि। दीक्षा के माध्यम से हम भौतिक इंद्रिय भोगों में भौतिक विषयों में रुचि कम हो सकती है और धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान में हमारी रुचि बढ़ेगी। सो दीक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है इस्कॉन के अंतर्गत खास करके, लेकिन मुख्य रूप से दीक्षा जैसा हमने पहले बताया था, दीक्षा उन्हीं भक्त को लेना चाहिए जिनको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का इच्छा हो अन्यथा नहीं। मटेरियल एंजॉयमेंट में अगर किसी का रुचि अगर कम है या वो कम करना चाहता है तो उसको दीक्षा लेना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में जिसको रुचि है और बढ़ना चाहता है आगे उसको दीक्षा लेनी चाहिए। जो तपस्या का पालन मन शरीर इंद्रियों का वश करने के लिए जो तैयार है चार नियम का पालन करने के लिए उसको दीक्षा ले। जिसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा है उसको दीक्षा लेनी चाहिए। और जो केवल फैशन के लिए दीक्षा नहीं लेना चाह रहा है उसको दीक्षा लेनी चाहिए, केवल दिखावे के लिए नहीं। अरे इसने दीक्षा लिया तो मैं भी दीक्षा लूंगा, ये तो मैं रह जाऊंगा, लोग बोलेंगे इतने सालों से तुम्हारा नाम अभी सरनेम ही चलता है, दास हुआ ही नहीं है। और जो गुरु के आज्ञा को फॉलो करने के लिए समर्पित होना होना चाहता है उसको ही दीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दीक्षा ले लिया फिर गुरु आपको कुछ भी बोले करना तो हमें वही करेंगे जो हमें करना है, तो इस तरह से दीक्षा का कोई अर्थ नहीं। सो इस तरह से कनिष्ठ मध्यम और उत्तम ये अलग अलग प्रकार की जो श्रद्धा है के आधार पर होते भक्त और उनकी हमें यथायोग्य संगति करनी चाहिए। जैसे हमने बताया कि कनिष्ठ भक्त जो है उनको मन से आदर देना चाहिए, मध्यम भक्त है उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, वर्बली नहीं, वो असली वाला दंडवत, वो फोन वाला दंडवत नहीं, फोन में बोलते हैं ना दंडवत प्रणाम। एक एक आई नो एक डिसाइपल राधानाथ स्वामी के डिसाइपल राधानाथ महाराज के सेक्रेटरी से सर्वेंट, वो जब भी फोन करेंगे तो दंडवत बोलता, दंडवत का अर्थ होता है कि फोन हाथ में लेकर के वो सीधा जमीन पे दंडवत, जहाँ कहीं भी किसी भी कोने में होंगे वो पूरा दंडवत करते थे। तो दंडवत मीन्स एक्चुअली दंडवत करना या प्रणाम करना, नॉट जस्ट वर्बल, लिप सर्विस नहीं। और तीसरा है उत्तम भक्त, उत्तम भक्त का अर्थ है उनकी संग करना, उनसे कृपा प्राप्त करना और उनसे गाइडेंस लेना, और गाइडेंस लेना करेक्शन लेना ये तो बहुत अच्छी बात है। जो भी भक्त आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है या फिर जो लीडर बनना चाहता है, जो लीडर है उसको करेक्शन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए और गाइडेंस के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, और उनको अपने साथी भक्तों से बार बार ये पूछना चाहिए समय समय पे कि मुझ में क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता लग रही है, मुझ में क्या करेक्शन की आवश्यकता है, मुझे आप क्या डायरेक्शन देना चाहते हो। तो इसमें कोई गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि आप इससे कोई व्यक्ति छोटा दिखेगा, छोटा नहीं दिखेगा, यही लीडरशिप के लक्षण है। So these are the three categories of devotees we should always take care of. And now we will talk about text number 6.
Prabhuji.
Question.
Prabhuji, हाँ, नहीं. Prabhuji, ये जो अभी आपने हमने ये discussion किया था कि उत्तम भक्त, उत्तम अधिकारी भक्त जो हैं, उनसे हमें आध्यात्मिक विषय में प्रश्न पूछना चाहिए और वो हमारी सहायता पूरी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो प्रभु जी एक्चुअली मैं बहुत टाइम से ये किसी से पूछने का सोच ही रही थी कि हमें जैसे हम भागवतम पढ़ते हैं या फिर भगवत गीता पढ़ते हैं, हर चीज में प्रश्न से ही ये पूरा पिक्चर बना है, हर सबके प्रश्नों से। तो वो उनके प्रश्न हमें समझ के अच्छे लगते हैं, परंतु ये खुद के बुद्धि में ये ऐसे प्रश्न करने को होते ही नहीं है। और जैसे आप बोल रहे हैं कि उत्तम भक्त को देखेंगे तो हम बस देखेंगे ही और कुछ शायद लाभ नहीं, मैं नहीं उठा सकती, मैं सबके बहुवचन में नहीं बोल रही। तो ऐसा तो मुझे ऐसा किसी न किसी से वैसे भी बहुत टाइम से ये था कि कुछ कि आप लोग कैसे प्रश्न पूछते हैं या फिर आप कैसे उनसे डील करते हैं, तो आप ये बता दीजिए प्रभु जी, जैसे या तो आपने किसी का सुना है या आपने कभी ऐसे उत्तम अधिकार भक्तों से पूछा है या थोड़ा कुछ भी, मतलब जिससे थोड़ा सा हम मुझे समझ में आ जाए कि कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं मतलब इट माइट साउंड
आई अंडरस्टूड। वेल हर एक भक्त का अपना अपना नेचर, अपना अपना साइकोलॉजिकल जो नेचर होता है तो उसके आधार पर वो चल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कभी हमारी इच्छा है और उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें जनरली चेतना पर रहना पड़ता है कि आध्यात्मिक विषयों का चिंतन किया जाता है, और जब आध्यात्मिक विषयों का चिंतन करते हो तो स्वाभाविक रूप से और चीज को समझने की आपकी इच्छा बढ़ती है। एग्जाम्पल, अगर आप कोई पिक्चर देख रहे हो, कोई फोटो है आपके सामने
जी,
तो वो फोटो का कोई भी एक कोना जब आप तो कंप्यूटर में जूम करोगे, पूरा जूम करोगे
जी,
तो जूम करने के बाद फिर शायद आप होता है कि पर्टिकुलर फोटो में यहाँ पर ये कमल का फूल है तो इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं और इसमें व्हाट आर द मेन्यू डिटेल्स। तो अभी किसी को ऐसी इच्छा होती है कि मैं यहाँ पर जूम करूँ और यहाँ इस विषय में ज्यादा जानकारी प्राप्त करूँ। तो जनरली आध्यात्मिक विषयों का जब चिंतन होता है तो भक्त को इस प्रकार की इच्छा होती है कि इस पर्टिकुलर विषय में मुझे अधिक जानकारी प्राप्त करने की इच्छा है, तो इसको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को थोड़ा एलोबरेट करके बताइए, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए, इस विषय में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। तो उस तरह से वो प्रश्न पूछते हैं। कभी कभी जो सामान्य ऑब्जर्वेशन होता है कि उनके जीवन में जो अनुभव हुए है या कभी कभी उनके मन में कुछ ऐसी शंकाएं या प्रश्न आते हैं, यद्यपि अधिकतर प्रश्नों के उत्तर हमने इतने सालों से पढ़ा है सुना है तो हमें मिल जाता है, लेकिन एक वक्त होता है कि जो इससे संतुष्ट हो जाता है। हाँ, कैसे भी करके उसके पास क्या होता है कि एक लीटर का डिब्बा होता है तो कैसे भी करके उसको दबा दबा करके स्क्वीज करके एक लीटर के डिब्बे के अंदर डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ज्ञान इतना है तो मैं उसके अंदर कैसे भी डाल देता हूँ, मैं किसी भी प्रश्न का आंसर दे देता हूँ, ऐसे खुद से मन से ही आंसर दे देता हूँ। तो फिर क्या होगा कि वो भक्त प्रश्न पूछने के लिए इच्छा नहीं करेगा, वो प्रयास करेगा कि वो खुद से ही उसका आंसर दे दे, अंदर से ही अंदर, मन में ही मन में। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि अपने आंसर से संतुष्ट ना हो करके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, क्योंकि वो ऐसा समझता है कि जब मुझे इस विषय में प्रश्न हुआ इसका अर्थ होता है कि मुझे किसी भक्त की सहायता से इसमें थोड़ा अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता है तो मैं इस चीज को गहराई से समझ पाऊंगा। तो लाइक दिस देयर आर डिफरेंट तरीके है कि धीरे धीरे आप अपने ज्ञान, आप अपनी समझ को, अपने साक्षात्कार को, अपनी श्रद्धा को, इसको आप विस्तृत कर सकते हैं, इसका विस्तार कर सकते हैं। लेकिन ये सारे व्यवहार में जो हमारा आचरण होता है वो होता है कि हमें बड़ा विनम्र रहना पड़ता है और कोई डिप्रिसियस नहीं। जैसे कुछ भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, तो पास जाके प्रश्न पूछते हैं और उनकी इच्छा क्या होती है कि 10 लोग को यही प्रश्न पूछेंगे, सुनता किसी का नहीं, इसको भी पूछेगा, इसको भी पूछेगा, इसको सबको पूछेगा, करेगा अपना ही। और कुछ ऐसे होता है कि क्वेश्चन उसके पास रेडी होता है और आंसर भी रेडी होता है, वही आंसर आपको बोलना पड़ेगा, अगर वो आंसर आप नहीं बोलते तो यार दिस इज नॉट द वे टू आस्क क्वेश्चन।
तो प्रभु ये मतलब ये तो फिर थोड़ा और हमें जितना फेथ बढ़ेगा उसके हिसाब से हम ज्यादा क्या बोलते हैं ज्यादा प्रगति कर पाएंगे। और कुछ सवाल क्योंकि ऐसा वैसे तो कभी मैं गुरु महाराज से मिली नहीं हूँ, अगर किसी दिन मिलेंगे, मिलने का मौका मिलेगा तो जैसे आप बोल रहे हैं वो सिचुएशन में मुझे नहीं रहना है, तो इसीलिए मैं थोड़ा मैं और भी पूछती हूँ किसी से तो वो मुझे नॉर्मल ये जवाब मिलता है कि आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, महाराज आपके बारे में समझ जाएंगे। तो फिर भी ऐसे एकदम से खुशी नहीं होती कि टाइम मतलब वो पूरा अपॉर्चुनिटी चले ना जाए, पर जब आएगा तब आएगा, बट आई वांट टू बी रेडी।
ऑल द बेस्ट, आपको अपॉर्चुनिटी मिले।
थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, प्लीज प्रे फॉर दैट अपॉर्चुनिटी टू कम।
सो मेनी ड्यूटीज टू प्रे फॉर यू।
थैंक यू।
यस प्रभु,
आपने बताया जैसे ये उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी के बारे में, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था कि मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी जैसे जो गुरुजन है वो मध्यम अधिकारी के स्तर पर आते हैं प्रचार करने के लिए। तो अभी आप बता रहे थे कि उत्तम अधिकारी प्रचार भी करते हैं, तो मैं क्योंकि उत्तम अधिकारी तो ये समझते हैं कि सभी जीव है वो सब भगवान के, मतलब उनको सेम कैटेगरी में वो समझते हैं, भगवान के दास समझते हैं, तो इसलिए वो प्रचार करने के लिए वो मध्यम अधिकारी के स्तर पे आते हैं। तो उत्तम अधिकारी फिर कैसे प्रचार करते, जैसे नारद मुनि है, प्रहलाद महाराज है, उत्तम अधिकारी वो कैसे, और वो लोग भी प्रचार तो करते ही है, प्रहलाद महाराज भी करते हैं, तो हाउ डू दे प्रीच।
भगवान की जो करुणा शक्ति है उसका संचार उनके हृदय में होता है, उत्तम भक्तों के हृदय में, और इसके कारण वो करुणा से प्रभावित होकर के वो तटस्थ होकर के ये सोच पाते है, और इसलिए कभी कभी उत्तम अधिकारी केवल प्रचार के लिए, और कोई मध्यम अधिकारी का बहुत दूसरे बहुत सारे लक्षण है, वो किसी लक्षण को वो एक्सेप्ट नहीं करते, अर्थात उसको ग्रहण नहीं करते, वो केवल एक ही लक्षण मध्यम अधिकारी का ग्रहण करते, क्या? जीवों पर कृपा करना, जो अज्ञानी है उन पर कृपा करना, बस यही लक्षण एक्सेप्ट करते। और उसका रीजन क्या है? भगवान की कृपा शक्ति उनके हृदय में प्रवेश किया हुआ है विशेष करके, और इसलिए जनरली चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त है वो सभी प्रचारक भक्त है। क्यों ऐसा? कि चैतन्य महाप्रभु महावदा न्याय उतारे, और महावदा न्याय का अर्थ था कि जब स्वयं भगवान, ये तो उत्तम अधिकारी की तो बात छोड़ दो, लेकिन स्वयं भगवान जब कृपा शक्ति से प्रभावित होकर के प्रचार करने के लिए स्वयं आते हैं, अपनी आचरी भक्ति सिखाई मुसबारे, तो फिर कौन उत्तम अधिकारी चैतन्य महाप्रभु से श्रेष्ठ हो सकता है? इसलिए फिर चैतन्य महाप्रभु की कृपा या उनका जो मूड है चैतन्य महाप्रभु का, वो मूड वो उत्तम अधिकारी के हृदय में डाल देते हैं। तो ये वसुदेव विप्रा, फिर रूप सनातन गोस्वामी, ये सब उत्तम अधिकारी कक्षा के भक्त है, लेकिन क्योंकि लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मान्यसे, दिस इज द मूड, दिस वे दे एक्सेप्ट मध्यम अधिकारी, अदरवाइज वो उत्तम ही रहते, वो कभी मध्यम की श्रेणी में नहीं आते, उत्तम ही रहते, केवल एक गुण मध्यम कर लेते, इसलिए कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि वो उत्तम से मध्यम में आते हैं।
ओके ओके थैंक यू।
और कोई प्रश्न?
प्रभु जी
माता जी कैन गो अहेड प्लीज।
प्रभु जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में चैप्टर 5 श्लोक 5 में जैसे श्री आपने आपने भी डिस्कस किया था, वो श्रीमद् भागवतम का 2 श्लोक दिया हुआ है, एक कनिष्ठ अधिकारी का और मध्यम अधिकारी का। तो प्रभु जी उत्तम अधिकारी का ये चैतन्य चरितामृत जो आपने बताया वही वाला श्लोक है?
नहीं, उत्तम अधिकारी का श्लोक श्रीमद् भागवतम में भी है।
हाँ
उसी के फॉलोइंग श्लोक।
हाँ क्योंकि ये 11.2.46 और 47 दिखा रहा है, तो शायद आगे पीछे का
45।
ओके ठीक है।
यस यस हरी कृष्ण। जैसे आपने बताया कि जो हाउ टू वन कैन अप्रोच एलिवेटेड डिवोटी या प्योर डिवोटी हो, तो जैसे कि बहुत ही कम ऐसी मोमेंट्स होती है जब हमें स्पिरिचुअल मास्टर का एसोसिएशन मिलता है या फिर जो ड्यूटी का एसोसिएशन मिलता है इन द फिजिकल फॉर्म है हालांकि, तो वो जब अपॉर्चुनिटी आती है किसी की लाइफ में या मेरी लाइफ में, तो हाउ वी कैन टेक द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी और मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दैट, सो दैट हमारा हमारा जो फेथ है या जो भी सरेंडर वो इंक्रीज हो सके।
तो व्हेन यू गेट अपॉर्चुनिटी, जब आपको ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है उस समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपके गुरु अभी आंसर देने की अवस्था में है, या कभी वो आपके जब जनरली कोई प्रश्न जिस पर एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होती है वो उचित समय देख करके पूछा जाता है, कि अगर हमारे पास केवल 2 मिनट वाला मिलने वाला है तो उसमें आप कोई ज्यादा डिस्कशन तो ऐसे भी नहीं करने वाले, तो आप तो केवल जस्ट गो एंड टेक हिज ब्लेसिंग्स, आप वो आपको आप पर दृष्टिपात करेंगे एंड दैट्स इट, नॉट मच, देयर इज नो नॉट मच कन्वर्सेशन, या फिर यू माइट लाइक टू इन्फॉर्म हिम समथिंग अबाउट, आई वांट टू आस्क वेरी स्मॉल क्वेश्चन जिसको यस नो में उत्तर दिया जा सकता हो ऐसे। बट जब आपको पता है कि आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि आप उनको आराम से प्रश्न पूछ सकते हैं, लाइक ही इज आस्किंग क्वेश्चन और ही इज रेडी टू आंसर, तो 5-10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ऐसा समय आपके पास है, फिर आपको जब पता होना चाहिए कि आपको किस प्रकार का समय मिलने वाला है, उसके आधार पर आपको सोचना चाहिए मिलने से पहले। जैसे कई बार आप कभी इंटरव्यू देने जाते हो कहीं पर, आप क्या करते हैं, आप बहुत प्रिपरेशन करते हो, बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, दिमाग को पूरा प्रिपेयर करके रखते हो, तो उस तरह से जब आप किसी संत व्यक्ति को मिलने जाते हो तो या उत्तम अधिकारी भक्त तो या तो आपको प्रश्न को पेपर पे लिख के जाना चाहिए या फिर आपको रेडी रखना चाहिए कि आपको क्या क्या पूछना है। ऐसा नहीं कि वो पूछेंगे हाँ एक सेकंड गुरु महाराज मुझे मैं सोच रहा हूँ कुछ याद था पता नहीं कोई प्रश्न तो आया था। ये उचित ठीक ये उचित नहीं है। बेस्ट वे इज टू कीप एवरीथिंग रेडी तो आपका अधिक से अधिक समय का पूरा लाभ आप उठा सको। अगर फिर भी अगर आपके मन में प्रश्न नहीं आते तो दूसरे जो आपके भक्त है साथ में उनके प्रश्न के उत्तर या उनकी उनकी चर्चा सुन करके अगर आपको मन में प्रश्न आता है स्टिल इट इज नॉट बैड स्टिल इज गुड बट द आइडिया इज दैट टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम सच एलिवेटेड पर्सनैलिटीज। ऐसे लोग जो है वो हमें उनका एक सेंटेंस ही हमारे लिए पूरा फुल यू नो बहुत सारे समस्याओं का समाधान कर देता है। तो इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी वी हैव बीन गिवन।
ओके थैंक यू।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे दो पॉइंट के लिए क्लैरिटी चाहिए। एक तो ये उत्तम अधिकारी जो है उनको हम कौन सी कैटेगरी में रूपानुगा में होते हैं या रागानुगा भक्ति में होते हैं और सेकेंडली व्हाट इज द क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन रागात्मिका रागानुगा एंड रूपानुगा भक्त।
आपका जो पहला प्रश्न है उसमें उत्तम अधिकारी स्वभाव स्वाभाविक रूप से राग भक्ति या भाव भक्ति में स्थिर होते हैं और साधन भक्ति का पूरा वो आचरण करते हैं भक्तों को सिखाने के लिए नए भक्तों को सिखाने के लिए। सर जी ने कि अगर वो शुद्ध भक्ति में स्थिर हुए तो फिर उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती। एक्चुअली दे आर मोस्ट अकाउंटेबल पीपल इसलिए उनका आचरण एकदम उत्तम होता है। और दूसरा प्रश्न था आपका रागात्मक रागानुगा और रूपानुगा में क्या अंतर है। अनुगा का अर्थ होता है फॉलो करना। फॉलो का अर्थ होता है कि जिस मार्ग को फॉलो करता है उसको अनुगा कहा जाता है। रूपानुगा और रागानुगा दोनों ही अलग डायरेक्शन में अलग अलग विषय है जिसकी कंपैरिजन नहीं हो पाएगी क्योंकि रूपानुगा उन भक्तों को कहा जाता है कि जो रूप गोस्वामी के चरण कमलों को फॉलो करने वाले उनकी शिक्षाओं के आधार पर भक्ति मार्ग को पालन करने वाले वो है रूपानुगा भक्त। और रागानुगा भक्त जो है वो भक्ति के जो अलग अलग विधि विधान है जैसे साधन भक्ति भाव भक्ति और प्रेम भक्ति उसमें साधन भक्ति के बाद वैधी साधन और रागानुगा साधन या राग साधन राग भक्ति स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट तो उसमें उनकी तुलना की जाती है। तो रागानुगा का अर्थ होता है कि जो भक्त स्पॉन्टेनियसली भगवान की सेवा में जुड़ा हुआ है और अनुगा राग अनुगा का अर्थ होता है कि जो किसी ऐसे भक्त जो रागात्मिका को फॉलो कर रहा है जैसे ब्रजवासी भक्त है कोई ऐसे ब्रजवासी भक्त का शरण ग्रहण करके उनके सिद्धांत पर उनकी लाइफस्टाइल पे उनकी चरणों कदमों पे वो चलता है तो देयर इज रागानुगा। सो रूपानुगा एंड रागानुगा बोथ आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आई मीन डिफरेंट कैटेगरीज।
थैंक यू प्रभु जी। एक्चुअली ये क्लैरिटी थी लेकिन मेरा और प्रभु जी के क्योंकि आपने आगे काफी अच्छे से समझाया था लेकिन अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मेरा और प्रभु जी का थोड़ा डिस्कशन हुआ था उसमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा था इसलिए मैंने दोबारा क्लैरिटी।
रागानुगा कैन बी देयर प्रभुपाद अनुगा इज आल्सो वर्ड टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं प्रभुपाद अनुगा का अर्थ है कि जो 100% प्रभुपाद के सिद्धांत को फॉलो करता है उनकी शिक्षाओं के आधार पर ही चलता है कुछ भी 19-20 भी नहीं करता दैट इज प्रभुपाद अनुगा।
थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जो कनिष्ठ अधिकारी जब मध्यम अधिकारी की जब सेवा की बात कर आपको बताया सेवा करनी चाहिए तो बप्पू और वाणी दोनों तो पानी सेवा वो किस प्रकार से कर सकता है?
पानी सेवा एक ही तरीके से होती है, उनके शिक्षाओं को पालन करना, उनके शिक्षाओं को सुनना, पढ़ना, उनकी शिक्षाओं को दूसरे की ओर आगे तक पहुंचाना, उनकी शिक्षा अलग अलग स्थानों तक पहुंचे, उस तरह की अरेंजमेंट करना, उसकी योजना बनाना, दैट इज ऑल वाणी सेवा। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज वाणी सेवा। फिर आप प्रवचन देते हो प्रभुपाद के आधार पर, शिक्षाओं के आधार पर, दैट इज वाणी सेवा। फिर आप सोशल मीडिया में प्रभुपाद के विषय में बताते हो, दैट इज वाणी सेवा। दीज आर ऑल वाणी सेवा। फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन, टू स्प्रेड हिज इंस्ट्रक्शन, to speak about, to think of and all this, whatever is related to his instruction, that is vani seva.
Okay. In short, every type of instruction in any way, whether it is distribution or following.
All instruction given by the authorities or spiritual master or Vaishnavas, that is vani seva.
Or ek, just out of curiosity puch rahi hu, कि माताजी लोग जो होते हैं वो गुरु महाराज के समक्ष प्रश्न पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं?
अवश्य पूछ सकते हैं। पर दो दिन पहले हमने आपको बताया था, एक माताजी प्रभुपाद को प्रश्न पूछना चाहते थे लेकिन वो नहीं गए, तो फिर प्रभुपाद ने सामने से उनको बुलाया कि आप क्यों नहीं पूछा प्रश्न, बोला आप बिजी थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि बिजी कितना भी हूँ, शिष्य के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ, शिष्य को उत्तर देने के लिए तो हमेशा तैयार हूँ। तो माता जी प्रभु जी तो केवल फिजिकल, केवल पर अलग अलग शरीर है, बाकी शिष्य तो शिष्य ही रहते।
नहीं, वो भी आपने उस टाइम बताया था कि प्रभुपाद जी को तो वात्सल्य भाव था अपने शिष्यों के प्रति।
प्रभु जी, प्रभु जी, ये परपोर्ट में टेक्स्ट आई के अधिकारी इज अ नियोफाइट हु हैज रिसीव्ड द हरिनाम इनिशिएशन फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर एंड इज ट्राइंग टू कैच द होली नेम। तो प्रभु जी, कनिष्ठ अधिकारी अगर वो भगवान की ही सिर्फ सेवा करते हैं और वो भक्तों को नहीं, भक्तों को इतना वो इम्पोर्टेंस और उनकी इम्पोर्टेंट महिमा नहीं जानते हैं, तो भी मतलब वो हरिनाम उनका होता है क्या? हो सकता है हरिनाम इनिशिएशन?
हाँ, हरिनाम इनिशिएशन तो हो सकता है ना, क्योंकि अगर वो नियमों का पालन कर रहे हैं और सोलह जब भी करते हैं तो उनका दीक्षा तो हो सकता है। और जनरली दीक्षा लेने का उद्देश्य कई बार उनका ऐसा ही होता है कि वो भगवान की अच्छे से सेवा करे।
ठीक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज को प्रभुपाद की उपाधि दी गई थी और उसी प्रकार से अभेद्रनारायण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को प्रभुपाद की उपाधि दी गई थी, तो प्रभुपाद उपाधि का अर्थ क्या होता है और उसके बाद जो अभी हमारे करंट गुरुजन हैं उनमें किसी को प्रभुपाद उपाधि क्यों नहीं थी?
प्रभुपाद स्वयं इस विषय में बताते हैं कि प्रभुपाद की उपाधि को इसलिए दी गई थी, प्रभुपाद का अर्थ होता है कि जो भगवान के चरण के पास में रहता हो या उनके चरणों में स्थिर हो। तो प्रभुपाद जो उपाधि है वो आचार्यों के लिए है। रूप गोस्वामी को भी प्रभुपाद कहा जाता है, सनातन गोस्वामी को भी प्रभुपाद कहा जाता है। जैसे प्रभुपाद जो उपाधि है, जो संबोधन है, वो आचार्यों के लिए किया जाता है, नॉट फॉर एवरीवन। सो प्रभुपाद ने ऐसा भी कहा था कि अभी गुरु शिष्य परंपरा आगे चलती रहेगी लेकिन उनका प्रभुपाद का कोई वन मैन सक्सेसर नहीं होगा, एक सक्सेसर नहीं होगा ऐसे। इसलिए प्रभुपाद की जो उपाधि है वो प्रभुपाद तक ही सीमित कर दी गई और जीबीसी जो है वो इस निर्णय पर आए थे, जीबीसी संस्था को आगे चलाने वाले हैं और उन्होंने ये निर्णय किया कि प्रभुपाद की उपाधि प्रभुपाद तक ही सीमित रहेगी और कोई बताएंगे नहीं। सो बाकी कहीं हमारे इस्कॉन गुरुस को भूतकाल में अलग अलग इस प्रकार की प्रभुपाद नहीं लेकिन उसके सिमिलर अलग अलग उपाधियां दी जाती थी प्रभुपाद के शिष्यों को भी, लेकिन वो भी फिर बाद में बंद किया गया। जैसे आपके कई गुरु के प्रणाम मंत्र में आपको ऐसे नाम मिलते हैं पाद वाले, लेकिन बाद में जीबीसी ने सोचा कि ये आगे जाकर के ये डिविएशन क्रिएट कर सकता है, इसलिए फिर उन लोगों ने वो संबोधन पब्लिक संबोधन में इसको मना कर दिया गया। तो इसलिए प्रभुपाद इज फॉर आचार्यस, भक्ति सिद्धांत इज ऑल्सो प्रभुपाद। एनी पीपल क्रिटिसाइज प्रभुपाद के, कई गुरु भाइयों ने प्रभुपाद की निंदा की थी कि वो उन्होंने भी प्रभुपाद नाम स्वीकार कर लिया, पर प्रभुपाद वेरी स्पेसिफिकली शोड हिम कि जस्ट सी कि आई डिड नॉट डू इट माई सेल्फ। मेरा लेटर हेड में जो कहीं पर प्रभुपाद का नाम, यू नो आई डोंट से भक्तिविदान स्वामी माई सिग्नेचर एसी भक्तिविदान स्वामी, बट माई डिसाइपल्स दे आर कॉलिंग मी प्रभुपाद एंड दे आर ऑफरिंग देयर डिवोशन एंड लव एंड देयरफॉर आई एक्सेप्ट इट। तो प्रभुपाद अपने को प्रभुपाद कहा जाए, उनको कहा गया था उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया था, बट ही नेवर वांट दैट दिस प्रभुपाद संबोधन प्रभुपाद एड्रेस इज फॉलोड लेटर ऑन बाय हिज डिसिपल्स।
थैंक यू प्रभु जी। एक और क्वेश्चन था प्रभु जी कि जैसे मेरे को कभी फील होता है कि हाँ जैसे गुरु महाराज, जैसे आप बताते हैं कि गुरु महाराज को फॉलो करना, उनकी वाणी को फॉलो करना ही बेसिकली उनको एक प्रकार से हम उनके अंतर्गत चल रहे हैं करके, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगता है कनेक्शन नहीं है मतलब मेरे और मेरे आध्यात्मिक गुरु महाराज बीच में, तो ऐसे केस में हम कैसे उसको और संबंधन कर सकते हैं?
उनकी महिमा सुननी चाहिए, आध्यात्मिक गुरु की महिमा सुननी चाहिए, उनके आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में भी उनका महिमा सुनना चाहिए और शास्त्र गुरु के विषय में क्या कहते हैं उसका महिमा भी सुनना चाहिए, और फिर समझना चाहिए कि आपके आध्यात्मिक जीवन की संपूर्ण प्रगति की जो जिम्मेदारी है वो इनके हाथ में है, और जैसे अधिक आप उनके विषय में सुनोगे, अधिक उनके विषय में कनेक्शन करोगे, आप अधिक अपने आप को समर्पित करोगे उनकी शिक्षाओं के प्रति, तो फिर आप जुड़ पाओगे उनकी शिक्षाओं के साथ। सो बाय हियरिंग ग्लोरीज ऑफ योर स्पिरिचुअल मास्टर एंड बाय ट्राइंग टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन ही इज गिविंग एंड समटाइम ही गिव्स, जैसे कई बार होता है कि गुरु ऐसा कहते हैं कि आप इतना करोगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, सो उसके आपको लगा इतने से क्या होता है, लेकिन उतने करने से ही बाकी सारे चीज अपने आप होने लगती है। तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। गुरु और गुरु के वरिष्ठ शिष्य, ये वास्तव में आपके सामने गुरु महाराज की इच्छा को ही प्रस्तुत करते हैं, और गुरु महाराज की इच्छा है प्रभुपाद की इच्छा। इसलिए जो भी वैष्णव हमारे संस्था में है, जो वरिष्ठ है, जो एडवांस है डिवोशनल लाइफ में, ऐसे भक्त जो भी संदेश आपको देते हैं वो एक रूप से आपके गुरु के प्रतिनिधि के रूप में ही बताते हैं। तो इसलिए हमारे ये वंडरफुल सोसाइटी है, यहाँ पर किसी भी गुरु के पास जाओ शिक्षा आपको एक ही प्राप्त होती है। हो सकता है क्योंकि उनके बताने के तरीके अलग अलग हो सकते हो, लेकिन एक ही शिक्षा सब देते हैं और वही चीज उनके शिष्य भी देते हैं। देयरफॉर वी शुड ट्राई टू कनेक्ट बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन and by listening his glories, by hearing about his glories and his saranagati and his services and all, then we can connect more, we can develop, cultivate love for him. The more you have love for your guru, the more sincere you are. Aap utne jyada nishthavan ho. Kyon? Then you are samarpit ho. Then you will do services beyond your capacities.
प्रभु जी मेरे केस में है कि मतलब जो मेरे काउंसलर हैं वो तो मतलब मेरे गुरु महाराज से इनिशिएटेड नहीं है, लेकिन गुरु महाराज के तो मैंने उनके बारे में बताया है और गुरु महाराज ने अग्री किया है कि आप उनसे गाइडेंस लीजिए, बट मैं मुझे पता नहीं है मैं क्यों, बट मुझे अभी कुछ हाल फिलहाल से ऐसा लग रहा है कि मैं गुरु महाराज से कनेक्टेड नहीं हूँ। हालांकि अच्छा एक प्रश्न है कि यदि मैं सब कुछ अच्छे से करती हूँ, अपने जो मेरे काउंसलर हैं उनके हिसाब से सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ या अपने साथ से करती हूँ, तो गुरु महाराज तो प्रसन्न होंगे ना, मतलब पता नहीं उन्हें पता कैसे चलेगा, मुझे नहीं पता।
उनको पता करने के लिए उनकी आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त है, वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भी आपको पता कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में भक्तों को, शिष्यों को समय समय पर, जैसे अगर आप इस्कॉन के जो रूल्स रेगुलेशंस है, कुछ नियम नियमावली है, तो उस नियमावली में ऐसा नियम भी है कि आध्यात्मिक गुरु से संपर्क बनाए रखना। संपर्क बनाने का अर्थ होता है कि समय समय पर उनको मिलना, उनसे फोन पे बात करना, उनसे लेटर लिखना और उनसे गाइडेंस लेते रहना। दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द यू नो रूल्स एंड रेगुलेशन बाय और अथॉरिटीज, सो वी शुड फॉलो दैट। अदरवाइज क्या होता है कि अगर कनेक्शन ही नहीं बना पाएंगे, जैसे कुछ आई नो सम ऑफ द डिवोटीज वो साल में एक ही दिन गुरु के पास जाते हैं व्यास पूजा के दिन बस, बाकी 364 दिन जो होता है उनको पता ही नहीं होता कि गुरु कौन सी दुनिया में है, और शिष्य को गुरु को भी नहीं पता होता कि शिष्य कौन सी दुनिया में। तो ऐसे भक्त रहेंगे अध्यात्म जीवन में, कैसे भी करके हाथ पांव मार के थोड़ा भक्ति में टिक जाएंगे, आगे बढ़ भी जाएंगे, या कभी वैष्णव दूसरे भक्तों की सहायता से, लेकिन उनका जो सही में आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, वो आध्यात्मिक विकास के लिए उनको गुरु के साथ कनेक्शन क्रिएट करना चाहिए। इसके विषय में देयर इज अ ब्यूटीफुल कोर्स, डिसाइपल कोर्स जो है, तो डिसाइपल कोर्स में आध्यात्मिक गुरु और शिष्य के संबंध को समझने के लिए बड़ा अच्छा गाइडेंस दिया जाता है। हाउ वी शुड स्ट्रॉन्गर, आप देखोगे प्रभुपाद के शिष्य का प्रभुपाद के साथ कैसा संबंध है, तो उसी तरह से धीरे धीरे हमें पढ़ाना चाहिए। वेल एट द सेम टाइम वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट द मेन पॉइंट इज शिक्षा, मेन पॉइंट इज वाणी, के आदेश का पालन, that is the main point, that you must understand.
प्रभु जी एक और मतलब जैसे मेरे को लगता है कि मैं तो बहुत, हालांकि अभी आपने एग्जांपल दिया कि श्रील प्रभुपाद की एक वो शिष्य थी, वो बिजी है मतलब श्रील प्रभुपाद, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कौन होती, मतलब मैं तो बहुत ही छोटी हूँ गुरु महाराज को, फोन तो बहुत दूर की बात है, मतलब थोड़ा संकोच सा होता है हमेशा गुरु महाराज को ऐसे कभी, हाँ वृंदावन जाते हैं तो हर बार मिलते हैं गुरु महाराज से, पर उसके अलावा पर मैं पर्सनल की मैं उनको फोन करूँ वो तो मतलब
धीरे 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 वो सब चला जाता है, थोड़ा शुरू शुरू में ऐसा रहता है, धीरे धीरे आप जो आप सेवा बढ़ाते जाओगे, आप प्रचार बढ़ाते जाओगे, आपका रियलाइजेशन बढ़ेगा, शास्त्र का ज्ञान बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा, फिर धीरे 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 वो जो भाव है वो चला जाएगा, फिर आप केवल अपने गुरु महाराज को नहीं, आप दूसरे भी जो गुरु महाराज के गुरु भाई है उनके साथ भी आप अच्छे से समय व्यतीत कर पाओगे, उनके साथ भी संबंध क्रिएट कर पाओगे, कनेक्शन क्रिएट कर पाओगे, नॉट ओनली विथ योर स्पिरिचुअल मास्टर बट इवन विथ अदर गुरुज ऑल्सो यू कैन क्रिएट कनेक्शन, बट दैट कम्स ग्रेजुअली, होगा, दैट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम। मेरा अनुभव ऐसा है कि मैं केवल अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ संपर्क को स्ट्रांग करने के साथ साथ उनके जो गुरु भाई है उनके साथ भी कनेक्शन स्ट्रांग, जैसे अनेक सन्यासी है उनके साथ भी कनेक्शन स्ट्रांग करने का प्रयास किया, लेकिन मेरा मुख्य फोकस रहता है कि गुरु के जो इच्छाएं होती है उस इच्छाओं को हमेशा समझने का प्रयास करना और उसके आधारित कार्य करना, तो ये शिष्य का एक कर्तव्य होना चाहिए। सो ग्रेजुअली इट कम्स।
थैंक यू
प्रभु जी। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, जैसे वो फर्स्ट प्रणाम मंत्र तो सबके लिए सेम ही रहता है, तो प्रभुपाद जी का या फिर भक्ति सिद्धांत स्वामी का, इनका सब प्रणाम मंत्र को मतलब कैसे कंपोज किया जाता है?
कभी कभी उनके गुरु भाई प्रणाम मंत्र कंपोज करते हैं और कभी कभी उनके जो वरिष्ठ शिष्य होते हैं वो प्रणाम मंत्र कंपोज करते हैं।
प्रभुपाद जी का उनके शिष्य ने किया था?
नहीं, गौड़िया मठ के एक सन्यासी ने किया था। सो वी कैन गो टू टेक्स्ट नंबर 6।
Yes, professor. After a long time, we had a good interactive session.
Yes.
We were missing this past 6 months, 5 months.
Yeah, what can we do?
Yes, nothing.
But today most likely will be our last discussion on Bhakti Shastri syllabus.
Okay.
Yes, so Anuvad Padhi.
अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न पुर में उत्पन्न होने के अक्रूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगाजल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतः जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे।
तो आप सोचिए, ये रूप गोस्वामी ने केवल 11 श्लोक लिखे और ये 11 श्लोक में भी उन्होंने इस पर्टिकुलर एक श्लोक में शुद्ध भक्ति महिमा और उनके प्रति सावधानी हमें कैसे रखनी चाहिए उसका इसमें स्पेशली वर्णन दिया है। क्योंकि ये हाथी माता का जैसे हमने चर्चा किया था, ये वैष्णव बाकी सारी चीज को एक साइड रख दो और वैष्णव की अप्रसन्नता या उनकी वैष्णव का अपराध वो एक साइड रख दो, तो एक वैष्णव का एक अपराध ही इतना भयानक होता है, काफी होता है। आपको सीधा यू नो न्यूक्लियर वेपन आपके भक्ति के बगीचे में गिरता है, सब समाप्त हो जाए, सब कुछ खत्म। तो शुद्ध भक्त कैसे होते हैं? अन्य अभिलाषिता शून्यम होते हैं, उनको किसी प्रकार की अव्यभिचारण होते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं होती और पूर्ण रूप से शुद्ध अनअलर्ट, इसका जंग निकल गया हो, एकदम स्वच्छ क्रिस्टल क्लियर निर्मल, ऐसे भक्त होते निर्मत्सराणाम सताम परमो निर्मत्सराणाम, ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं। इसलिए कभी कभी उनके शरीर के जो फीचर्स होते हैं, जैसे कोई गुरु होते हैं जो अफ्रीका से है, तो या जो शुद्ध भक्त है अफ्रीका से है, तो वो उनका शरीर का कलर एकदम काला हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज जो है वो कुछ प्रभावित नहीं करती किसी चीज को। केवल बाह्य दृष्टिकोण से किसी शुद्ध भक्त को देखना That is not right way. तो ये भौतिक कंडीशन से वो सब्जेक्टेड नहीं होते, उनका कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम होता है और उनकी सेवा के माध्यम से, उनकी वाणी के माध्यम से ये प्रेम प्रकाशित होता है। और शुद्ध भक्त को केवल वही भक्त वही लोग समझ सकते हैं जिसके हृदय में भक्ति होती है, अन्यथा वो भक्त को अभक्त नहीं समझ पाएंगे। जैसे बॉडीली डिफेक्ट्स के माध्यम से किसी को किसी का निंदा करना या किसी की हंसी उड़ाना या किसी का अपराध करना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ हमारे सन्यासी हैं, उनके शरीर कमजोर हो गए उम्र के कारण या किसी रोग के कारण, तो उनकी उस शरीर की अवस्था को नहीं देखना चाहिए। जैसे हमारे वासुदेव विप्र थे चैतन्य लीला में, तो वासुदेव विप्रा वो लिप्रसी थे, उनका पूरे शरीर में सनातन गोस्वामी को भी पूरे शरीर में लिप्रसी हुआ। तो शुद्ध भक्ति जो है वो बॉडीली डिफॉर्मिटीज से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या करना चाहिए? वन शुड नॉट क्रिटिसाइज बॉडीली डिफॉर्मिटीज ऑफ एनी डिवोटी। किसी भक्त का जब शरीर का कोई समस्या है उसका, तो उसका निंदा नहीं करना चाहिए, उसको ओवरलुक करना चाहिए। व्हाटएवर कमजोरी ही है, व्हाटएवर लिमिटेशन ही है। कई बार ऐसा होता है कि किसी का जन्म ऐसी जगह हुआ है, दैट इज सेकंड पॉइंट. जन्म के कारण कुछ चीज ऐसी होती है कि वो ही इज नॉट एबल टू चेंज. और वो शुद्ध रूप से कृष्ण भक्ति में किस तरह से जुड़ा हुआ है इसको देखना चाहिए. बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, अपिचे सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु रेवस मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो. अगर कोई व्यक्ति बाह्य दृष्टि से देखने से कभी ऐसा लगे कि अबोवेनेबल एक्टिविटीज में जुड़ गया हो ऐसा दिखे, लेकिन अगर उसने अपने आप को करेक्ट किया है, अगर वो सेंटली व्यक्ति है और फिर से शुद्ध भक्ति में स्थिर हो गया है या सुधार की अवस्था में फिर से स्थिर हो गया है, उसको साधु मानना चाहिए क्योंकि वो सम्यक व्यवस्थित हो इससे. सो जैसे कुछ देश में कोई जन्म लेता है तो उनके खाने के तरीके अलग होते हैं, उनके कुछ उनकी सर्टेन डिमांड्स होती है, तो इसके कारण उनको अबोमिनेबल नहीं माना जाता है. ऑफ कोर्स इसका अर्थ ये नहीं कि वो सिद्धांत का पालन नहीं करते, सिद्धांत का चुस्त पालन करते हैं, बट बिकॉज ऑफ देयर बर्थ हैज यू नो उन्होंने विदेश की धरती में या अमेरिका यूरोप ऐसी जगह उनका जन्म है, तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस. प्रभुपाद इंटरनेशनल टीचिंग किया तो प्रभुपाद हैड टू कंसिडर ऑल दिस. किसी की बॉडी डिफॉर्मिटी होती है वो उनके पूर्व जन्म के दोषों के कारण, ये उनका एक साइन है, एक उनका एक लक्षण है. लेकिन ऐसा भक्त हो सकता है उसका अंतिम जन्म हो, वो आप जब भगवत धाम चला जाएगा तो एक साधु, उसको साधु मानना चाहिए अगर वो पूर्ण रूप से शरणागत है. तो इसलिए कभी कभी शुद्ध भक्त होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन में चले जाते हैं. एक्सट्रीम कंडीशन का अर्थ क्या होता है कि कभी कभी कृष्ण कृपा करने के लिए भक्त के ऊपर से सारा सपोर्ट वापस ले लेते हैं.
प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है,
होल्ड पे रखने के लिए बोला है माता जी.
सॉरी. तो अगर कोई व्यक्ति अनजान अवस्था में किसी भक्त का अपराध कर देता है फिर भी उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है. वो आपने रूप गोस्वामी का एग्जाम्पल दिया था. सो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे अष्टावक्र तो उसकी बॉडी डिफॉर्म बॉडी है. तो इसलिए वन शुड नॉट कंसीडर दिस थिंग इम्पोर्टेंट. वो ब्राह्मण फैमिली में हो सकता हो या गोस्वामी फैमिली में जन्म लेगा तभी उसको माना जाता है. नॉट डेट गोस्वामी का अर्थ है कि जो गोस्वामी को वश में रखता है.
एक्सट्रीम सिचुएशन ये समझा रहे थे. इज दिस द पॉइंट अंडर दैट?
एक्सट्रीम सिचुएशन एक्सट्रीम सिचुएशन का अर्थ होता है कि व्हेन कृष्णा टेक्स अवे सपोर्ट फ्रॉम द डिवोटी, तो इसलिए उसको उसका जो उस पर कृपा करने के लिए, ताकि भगवान कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि भक्त जो होता है वो उसके पास फिर कोई चारा ही बचेगा नहीं, पूर्ण शरणागत होना ही पड़ेगा उसको. तो उसको कभी एक्सट्रीम सिचुएशन में डाला जाता है भगवान के द्वारा. तो भाई संसार में लोग क्या सोचते हैं, देखो देखो बड़ा भक्ति कर रहा था, क्या मिला उसको भक्ति करके, इससे जितना है कि हम लोग अभक्त है और हमें कुछ नहीं हुआ. देखा कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, या कभी कभी कुछ अज्ञानी भक्त होते हैं या फिर कनिष्ठ है एकदम नए भक्त, वो सोचते हैं जरूर इसने इस जन्म में कोई ना कोई अपराध किया होगा इसलिए इसको ये परिणाम प्राप्त हुआ है. क्योंकि जजमेंटल मेंटालिटी होती है ना सबकी, जजमेंट करना चाहते हैं हम, इसको जज करेंगे, सब सर्व न्यायाधीश बनना चाहते. कभी कभी भगवान भक्त के साथ विशेष करके कृपा करते हो, जैसे प्रभुपाद जी उनके सारे बिजनेस फेल, सारी उनकी इतना गरीब हो गया कि कुछ खाने का खाने के लिए पैसा नहीं था घर में. सो एक्सट्रीम सिचुएशन कैन बी एनीथिंग, बट एक्सट्रीम सिचुएशन जो होता है दैट इज सम टाइम टू हिज डिवोटीज कृष्ण पर्पसफुली क्रिएट दैट. उसको तो केवल गुरु समझा सकते हैं और जो अनुभवी भक्त है वही समझ सकते हैं. एवरीवन कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट. देयरफॉर डिवोटीज जो होते हैं उनका जन्म एक तो शरीर का हुआ और जन्म का है. जन्म में क्या होता है कि जरूरी नहीं क्योंकि शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्म होना चाहिए या ब्राह्मण या मिश्रा जोशी ऐसा कोई होना चाहिए. नॉट रिक्वायर्ड. आई मीन सब में या ऐसा कोई लेना देना नहीं है. डिवोटी गोस्वामी होता है अपने आचरण से, अपने इंद्रियों को वश में लाता है. इंद्रियों के वश में नहीं आ जाता है उस व्यक्ति को स्वामी गोस्वामी कहा जाता है. गोस्वामी फैमिली में जन्म ना भी हो फिर भी वो शुद्ध भक्त माना जाता है और वो अहंकार से मुक्त और ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होता है, इसलिए वो शुद्ध भक्त की अवस्था पर पहुंच सकता है. और सो लाइक दिस ये गोस्वामी आज के समय में तो इतना नहीं है लेकिन पहले के समय पे गोस्वामी गोस्वामी जाति के लोग या गोस्वामी फैमिली के लोग कोई गोस्वामी बोलते थे. प्रभुपाद इसको बहुत विरोध किए थे कि दिस इज अ रॉन्ग सिस्टम, ये सिस्टम काम नहीं करती. और कुछ लोग ऐसा बोलते कि हमारा जन्म जैसे गुजरात में व्यास दवेज त्रिपाठी और क्या क्या हो ये सारे ब्राह्मण फैमिली के होते हैं. बट दिस इज नॉट सॉरी इफ आप में से कोई ब्राह्मण फैमिली का है तो प्लीज डोंट माइंड मी. बट द पॉइंट हियर इज दैट केवल जन्म से ब्राह्मण या जन्म से उच्च खानदान में जन्म होना इतना काफी है और उसके आधार से किसी वैष्णव की कैटेगरी या श्रेणी तय करना ये भी ठीक नहीं है. जैसे हमने एक बार आपको बताया था कि हम गुजराती गुजराती या फिर पंजाबी पंजाबी जो ये सब डिजाइन ऑफ ये समझना ये केवल बॉडी प्लेटफॉर्म पे है, ये आध्यात्मिक जीवन से इससे कोई लेना देना नहीं. ये पाटीदार लॉबी और दूसरा कौन सा, देयर सो मेनी सच अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी ऐसी है. बट दिस हैज नथिंग टू डू विद अस. ये सब मटेरियल अंडरस्टैंडिंग है. आध्यात्मिक चेतना से इसका कोई संबंध नहीं है. तो कास्ट गोस्वामी को प्रभुपाद ने रिजेक्ट कर दिया था. कास्ट गोस्वामी गोस्वामी जो है कोई हेरिडिटरी नहीं है तो भाई मेरे वंश को वो मिलेगा. तो इस आधार पर किसी का अगर अपमान किया जाता है या फिर सो दैट इज नॉट गोइंग टू बक्सी महाराज ने इसका विरोध किया था. पाकिस्तान सरस्वती ने कहा था कि ये गोस्वामी जाति नहीं है, गोस्वामी का बेटा गोस्वामी जरूर नहीं है. तो उनको यहाँ तक उनका विरोध हुआ था कि उनकी सुपारी दी गई थी किसी के द्वारा. देयर सो मेनी सच इंसिडेंट्स. तो किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने नॉय यही कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण का तत्ववेत्ता है वही गुरु हो सकता है. बक्सीदास सरस्वती महाराज की निंदा बहुत जगह हुई, जैसे गाधर गोस्वामी के लिए, फिर उनकी निंदा हुई थी सन्यास को लेकर के कि उन्होंने सन्यास कैसे लिया. पहले के समय में कोई भी भक्त होता था वो सन्यास नहीं ले सीधा परमहंस बन जाता था, लेकिन बाद में फिर उसके आचरण में बहुत सारी कमियां आती थी तो ये सिस्टम को बंद करना चाहते थे भक्ति सिद्धांत, इसलिए उन्होंने सन्यास लिया. चार प्रकार के सन्यास होते हैं, कुटीचक बहुधक परिव्राजक परमहंस. तो उसका चर्चा बाद में कर सकता हूँ कभी. भक्तिदास सरस्वती महाराज एक्सेप्ट सन्यास टू द फोटो ऑफ बाबाजी महाराज, बट देयर इज एन एक्सेप्शनल केस This is not always the case. So, American Vishnu ko bhi Vrindavan mein kahin virodh ka samna karna pada tha. So, janm ke aadhar se ye tay nahi kiya jata, unki ninda bhi nahi karne wali. Phir bhautik drishtikon se unko nahi dekha jata hai. उनको भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, एक्सटर्नल बाह्य दृष्टि से उनको एक्सटर्नल नहीं देखो, और उनके अंतरंग उनका जो टीचर से उनका भाव है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, किस तरह से वो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम भौतिक रूप से परिचित है इसलिए कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण भक्ति जो है वो सीमित है, वो कुछ 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 प्रकार के लोगों तक सीमित है, कुछ सेक्शन ऑफ डिवोटीज तक वो सीमित है, या कुछ कुछ धरती कुछ जमीन के लोग के, जैसे कुछ कुछ विदेशी तो भक्ति नहीं कर सकते, कोई सोचता है कि वो गरीब है इसमें भक्ति नहीं कर सकता, कोई कहता है वो अमीर है इसमें भक्ति नहीं कर सकता, पर कृष्ण भावनामृत किसी के साथ सीमित नहीं है, जैसे हमने पैदा को बताया कोई व्यक्ति अंधा है तो भक्ति नहीं कर सकता, बट दीज आर ऑल बॉडीली अंडरस्टैंडिंग, सो लाइक दिस फिर उनका जेलस करना, उनकी निंदा, उनसे उनकी ईर्ष्या करना, जैसे प्रभुपाद के कई गुरु भाई थे जो प्रभुपाद के विषय में बहुत अनासनाथ बोलते थे, क्यों? क्योंकि उनको ईर्ष्या होती थी, प्रभुपाद ने इतना बड़ा सेवा कर दिया और अभी हम एक मंदिर में एक कमरे के कौन सा कमरा कौन लेगा उसके अंदर झगड़ रहे, तो उनके प्रति उनके उनके प्रति किसी प्रकार का व्यवहार में कठोरता नहीं करना उनके साथ, और साथ में उनको शिक्षा देने का प्रयास नहीं करना, शिष्य को कभी आध्यात्मिक गुरु को गाइडेंस नहीं देना चाहिए, गुरु महाराज आपको आप चाहे कुछ भी करो मेरी एडवाइस मानो, आपको ये करना चाहिए, तो गुरु आपके हमारी एडवाइस लेने के लिए बाध्य नहीं है, और गुरु को करेक्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, तो गुरु आप यू मस्ट बी करेक्टेड, तो there are many such examples are there, but I can't describe entire every small example. But yes, एक बार एक भक्त को प्रभुपाद ने दीक्षा दिया, तो प्रभुपाद ने नियम बनाए थे कि GBCA टेम्पल अथॉरिटी जब आपको परमिशन देंगे तभी आप दीक्षा ले सकते हो, दीक्षा दे सकते हो प्रभुपाद, तभी दीक्षा ले सकते हो प्रभुपाद से, तो एक भक्त में ये तो क्लियर था, लेकिन बाद में एक भक्त को प्रभुपाद ने दीक्षा दिया, प्रभुपाद जो दीक्षा लेना चाहते थे, तो फिर एक शिष्य ने आकर के प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि GBCA और गुरु ये प्रेसिडेंट है, उनको उन्होंने ऑथोराइज नहीं किया दीक्षा देने के लिए, तो फिर प्रभुपाद ने उनको तुरंत क्लियर कर दिया, प्रभुपाद ने कहा कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग, मुझे किसी के रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं है, सो लाइक दिस, ऑफ कोर्स ही इज द फाउंडर आचार्य सो ही कैन टॉक दिस वे, सो दिस इज द आइडिया, और अगर कोई भक्त इस तरह से किसी वैष्णव यशोद भक्त का अपराध भी करता है तो इसका परिणाम होता है कि उसका आध्यात्मिक जीवन रुक जाता है, या तो फिर बड़े भय में बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन में पहुंच जाता है, जैसे एक भक्त का नाम था पुरुषोत्तम दास, प्रभुपाद के शिष्य थे, उसको चंद्र पे जो अमेरिका के लोग गए थे उसके भी उसको बड़ा आकर्षण था, तो आपको प्रभुपाद बायोग्राफी में पढ़ने आता है, प्रभुपाद कभी कभी उसकी हंसी भी उड़ा देते थे, एक बार वो किचन में गया था, किचन में कुछ धमाका हुआ था तो उसका पूरा मुंह काला काला हो गया था पुरुषोत्तम दास का, और उसी समय प्रभुपाद ने उसको बोला पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम वहां पर आए और वैसी अवस्था में आए, दरवाजा खोला पूरा काला काला था, देखकर हंसने लगे, प्रभुपाद ने कहा क्या हो गया, किसी भक्त ने कहा कि ये ऐसा क्या हो गया, प्रभुपाद ने कहा कि लगता है पुरुषोत्तम चंद्र पे जाके आया है, तो बाद में उसको उसको गुरु पे श्रद्धा कम थी और उसको चंद्र पे जाने पे श्रद्धा ज्यादा थी। तो बाद में फिर उसने प्रभुपाद को छोड़ दिया, भक्ति भक्ति सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा एक भक्त था, वो छोड़ के चला गया था, दूसरा नाम है, वो छोड़ के चला गया था, उसका वो आकर्षण किसी और चीजों में हो गया था, माया के प्रति हो गया था। बाद में फिर प्रभुपाद को एक लेटर लिखा, प्रभुपाद अगर कोई आप हायर आशीर्वाद देना चाहते हो तो मैं आपके पास आ सकता हूँ। प्रभुपाद ने कहा यस आई कैन गिव यू हायर बेनेडिक्शन, दैट आई गिव यू माय ब्लेसिंग्स टू गो टू हेल, नरक में जाओ। तो लाइक दिस जो वैष्णव अपराध करते हैं या गुरु के अपराध करते हैं, दे आर यू नो, उससे अच्छा है रोड का जो भंगी वो अच्छा है, कम से कम वैष्णव अपराध तो नहीं कर रहे। तो इसलिए सभी वैष्णव का आदर करना और आध्यात्मिक अथॉरिटीज जो है उनके अंतर्गत रह करके सेवा करना, जन्म के आधार पर, एक्सीडेंटल फॉल डाउन के आधार पर, पूर्व जन्म के पापों का बचे हुए कुछ परिणाम के आधार पर, और उनके कृष्ण भक्ति में जुड़ने से पहले किए गए पापों के आधार पर किसी भक्त की निंदा करना, ये वैष्णव अपराध की श्रेणी में आता है। सो दीज आर ऑल कम्स अंडर वैष्णव, सो वी शुड अवॉइड वैष्णव ऑफेंसेस, एंड देन आवर इम्प्रूवमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस विल बी रैपिड। सो वी कैन गो टू टेक्स्ट नंबर 7 बिफोर दैट एनी क्वेश्चन।
क्वेश्चन है कि जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि ऑफेंसेस नहीं करने गुरु के प्रति, गुरुजन के प्रति या किसी एलिवेटेड डिवोटी नहीं करना चाहिए, तो हम या मैं जो है वो ध्यान रखते हैं रखता हूँ कि इस्कॉन के में जो डिवोटी एसोसिएशन है या है वहां पे नहीं करे, पर हमें कैसे, मुझे कैसे जजमेंट होना चाहिए कि दूसरी और कोई संप्रदाय है वहां पे भी है, वहां पे भी डिवोशन है, वहां पे भी कर रहे हैं, उसके प्रति हमें कैसे, उसके प्रति ऑफेंसेस कैसे हमें बचना चाहिए?
यस, सबसे पहले तो जब तक हमें ये नहीं पता, खास करके जब संप्रदाय या ऑर्गेनाइजेशन से, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि वो आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा से चुस्त रूप से जुड़े हुए कि नहीं, या फिर अगर जुड़े हुए तो चुस्त रूप से पालन कर रहे हैं कि नहीं, क्या वो लोग उनका आचरण शास्त्र के आधार पर है कि नहीं, क्या वो चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं कि नहीं। अगर ये सब चीजों का हमें पूरा ज्ञान नहीं है तो उन लोगों से दूर ही रहना चाहिए, उनको आदर देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ ये नहीं कि उनका अनादर करे, इसका अर्थ यह है कि हम उनसे दूरी बनाए रखते हैं, हम उनके साथ मिलते जुलते नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है या हम किसी इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन या संस्था में जाते हैं तो एक सोशल कंडक्ट के रूप में उनको आदर दिया जा सकता है, एक सामाजिक रूप में, और अपनी अपनी मर्यादा में रहकर, सीमा में रहकर के कुछ मीठे शब्द बोले जा सकते हैं, दैट्स इट, बट वी कैन नॉट प्रेज देम और ग्लोरीफाई देम, cannot appreciate because so this is all these things we have to take care, क्योंकि प्रभुपाद को कभी ऐसे बुलाया जाता था, प्रभुपाद की बात अलग थी, तो प्रभुपाद तो अगर कोई गलत होता है तो उसको गलत बोल ही देते थे, but we cannot do that, so we have to, best is that we remain aloof from such people, different जो संस्था या संप्रदाय के लोग हैं या sect के, अगर ये कहना तो ठीक नहीं रहेगा कि वो लोग भी भक्त है या शुद्ध भक्त है या फिर कैसे भी भक्त है, क्योंकि वाय हम क्यों इतना कष्ट उठाएंगे कि वो लोग को जज करेंगे, उनको उनका क्या, बट बिकॉज वी नेवर नो कि वो कौन से संप्रदाय से जुड़े हैं, उनका आचरण क्या है, वो कौन से शास्त्र को मानते हैं, साधन क्या है, साध्य क्या है, नेवर नो। We should be कि जो चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानता है, नित्यानंद प्रभु को भगवान मानता है, बस हम उसी व्यक्ति को भक्त मान सकते हैं, ऐसा हम दृढ़ निर्णय कर सकते हैं।
हो गया थैंक यू
टेक्स्ट नंबर सेवन क्वेश्चन
नो शैल आई रीड द ट्रांसलेशन
यस ट्रांसलेशन
कृष्ण का पवित्र नाम चरित्र लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोगी ग्रस्त रोगी की जीव किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती यह आश्रय की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से की जीव प्राकृतिक स्वाद जागृत होता है और उसका धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है
या। तो हम लोग अभी अज्ञानता में है अज्ञानता से रोगी अवस्था में होने के कारण हमें चीनी का जो स्वाद है वो हम इसको समझ नहीं पाते जैसे सिम्टम्स हमारे सिम्टम क्या है डिसीज के हम रोग ग्रस्त अवस्था में ऐसी तुलना की गई है पीलिया का रोग भी बोला जा रहा है पीलिया व्हाट इज दैट पीलिया
जॉन्डिस
जॉन्डिस हुआ है और इसके सिम्टम क्या है हमें कृष्ण के नाम के प्रति कोई स्वाद ही नहीं है उनकी लीलाओं के प्रति कोई स्वाद नहीं है जब वो सुगर कैंडी जैसे बड़े मीठे है कृष्ण ऐसे शब्द इतने मीठे है बट हमें इसको कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है उसमें कोई रुचि कोई आनंद कोई हृदय में किसी प्रकार का कोई अनुभव ही नहीं आता है और इसलिए हम जॉन्डिस जैसी बीमारी से परेशान है और इसके कारण इसका मधुरता नहीं समझ सकते ऐसा क्यों हुआ ये जॉन्डिस कैसे हुआ जॉन्डिस का रीजन है अविद्या हमारी अज्ञानता जिसमें भगवान के दिव्य नामों के प्रति हमें कोई आकर्षण नहीं है तो जब कृष्ण भक्ति में हम जुड़ते हैं तो फिर धीरे 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 ये अज्ञानता दूर हो सकती है और ये अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान के जो दिव्य नाम है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं हरि नाम औषधि लव सदा व्हाट इज दैट एनर्जी औषधि माया नाशिबार हो जाएगी मैं तुम्हारे लिए औषधि लेके आया हूँ जिससे माया नष्ट हो जाएगी भौतिक एजुकेशन इसमें कोई सहायता नहीं कर सकती भौतिक एजुकेशन इसमें कोई सहायता नहीं कर सकती वो तो हमें केवल किस तरह से इंद्रिय भोग अधिक कर सके इसका ही बताते हैं इंद्रियों की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि उसको किसी और तरीके से भौतिक तरीके से ये अज्ञानता को नष्ट नहीं किया जा सकता जैसे हमने एक बार आपको एग्जांपल दिया था अकबर बिरबल वाला एक बार अकबर ने पूछा था कि ये सेक्स डिजायर जो है कब जाती है तो बिरबल ने जवाब दिया था कि मृत्यु तक नहीं जाती मृत्यु तक रहती है ना 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 मैं नहीं मानता हूँ एक बूढ़े व्यक्ति के पास ले गए जो मरने ही वाला था कुछ दिनों में तो ऐसे व्यक्ति के पास जवान बेटी को लेकर गए थे जवान बेटी को ही देखता रहा वो बूढ़ा आदमी आंखें चौड़ी हो गई उसकी तो ये अज्ञानता इस तरह से नहीं जाती अज्ञानता केवल भगवान के दिव्य नामों से ही जा सकती है एक रीजन है अज्ञानता दूसरा है विस्मरण भगवान को विस्मरण दैट इज अज्ञानता ओनली तो ये है विस्मरण फॉरगेटफुलनेस भूलिया जीव इवर कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर अतएव माया तारे देह संसार दुख ये डिसीज कंडीशन में हम मटेरियलिस्टिक जीवन के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं और कृष्ण भावनावृत के प्रति आकर्षित नहीं होते नॉर्मल कंडीशन क्या है हमारी अपसाइड ये अभी हम जो है वो अपसाइड डाउन है लेकिन नॉर्मल कंडीशन क्या है कि हम जीव कृष्ण दास ए विश्वास ये नॉर्मल कंडीशन है जब हम इसमें स्थिर हो जाते हैं देन वी आर हैप्पी देन वी आर कंफर्टेबल देन वी आर प्रॉपरली सिचुएटेड अन्यथा दुराशया ये बहिरर्थ मानने बहिरर्थ मानने का अर्थ होता है होप अगेंस्ट होप ऐसे अपने आप को ठीक करने का प्रयास करना इस तरह से सुखी होने का प्रयास करना बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. भौतिक शक्तियों का शरण लेने का अर्थ क्या होता है, भौतिक चीजों का, वो आपको अधिक से अधिक निकम्मा बना देती है, अधिक अधिक डिपेंडिंग बना देती है. सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उसके ऊपर आप डिपेंड करते हो और परिणाम क्या आता है, डिस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, नथिंग एल्स. तो यही प्रहलाद महाराज कहते हैं, मति न कृष्ण पुनः पुनः चरित चरवाना. हम लोग चबाई हुई चीज को चबाते और फिर कुछ मिलता है, नहीं तो रोते है, ये हमारी समस्या है. फिर एक तो ये तरीका हुआ अज्ञान का. दूसरा होता है कलेक्टिव कॉजेस. कलेक्टिव कॉजेस का अर्थ क्या होता है कि हमारे जो लीडरशिप है वो नास्तिक होती है कई बार, जैसे राजनेता या फिर जो भी समाज को रास्ता दिखाने वाले होते हैं वो लोग ही भक्त नहीं होते. उनके नवाम दुष्कृतियों की जो इस कैटेगरीज है उनमें जो वो लोग होते हैं वो सब लीडर बन जाते हैं. तो जैसे एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल वार्डन था, उसने डिक्लेयर किया कि यहाँ पर इस्कॉन के भक्त को प्रचार के लिए नहीं आने देना, यहाँ पर शराब आ सकती है. लाइक दिस, अभी ऐसे लोग आपके लीडर होंगे, ये क्या सिखाएंगे आपको. जैसे अभी अभी हमने बता रहे थे कि ये कोरोना के कारण आप गैदरिंग नहीं कर सकते, मंदिर नहीं खोल सकते, लेकिन शराब की दुकानें खोलनी पड़ेगी, ये क्या सिखाएंगे आप, ये लीडर, ऐसे लीडर क्या सिखाएंगे आप. सो दिस इज द थिंग, दीज आर द रीजंस बिहाइंड. सो इसका क्योर क्या है, चैनिंग ऑफ द होली नेम, भगवान के दिव्य नामों को बड़े सावधानी से जप करना, ग्रेट केयर एंड ग्रेट अटेंशन, अपराध रहित होकर के. जैसे कोई बेसबॉल प्लेयर होता है वो क्या केवल बॉल को ही देखता है, राइट. कोई क्रिकेट प्लेयर होता है वो केवल बॉल को ही देखता है, एक इधर से उधर इसका ध्यान नहीं जाता है. सिमिलरली जब हम चैंटिंग करें तो हमें भगवान के नामों को सुनने के लिए वी हैव टू concentrate. It's so important to hear the holy name. So important. कई बार हम इसकी महिमा को नहीं समझ सकते. भक्तिवेंद्र ठाकुर ने जगन्नाथपुरी में उनके कमरे की जो दीवार थी वो इतनी चौड़ी बनाई थी ताकि बाहर का आवाज अंदर ना आए. भक्ति सनातन गोस्वामी एक बार 20 फुट ऊंडाई वाला एक गड्ढा था उसके अंदर बैठ करके चैनिंग कर ताकि वो भगवान के नामों को सुन सके. सो द आइडिया इज दैट वी मस्ट हियर द होली नेम, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट अवर माइंड ऑन द होली नेम. और कुछ नहीं होता है तो चलेगा, बट वी मस्ट हियर द होली नेम. तो सब प्रकार के मिसकंसेप्शन से हम निकल जाएंगे अगर अच्छे से चैंटिंग करेंगे तो सुन करके, तो सब प्रकार के अनर्थ नष्ट हो जाएंगे. भौतिक अस्तित्व का जो दावा नल है, संसार दावा नल, वो नष्ट हो जाएगा. भगवान की जो आध्यात्मिक जीवन है उसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा, या फिर कभी कभी अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, उससे मुक्त, छह हमारे शत्रु है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इससे हृदय स्वच्छ होने लगेगा. छह तो धर्म मार्जन, ये सब होना शुरू हो जाएगा. तो इसलिए जैसे कभी कभी फिलोसॉफिकल मिसकंसेप्शन भी होते हैं, प्रभुपाद के भी कुछ तीन चार ऐसे सन्यासी जो प्रभुपाद को गुरु मान, गुरु प्रभुपाद को भगवान मान दिए, प्रभुपाद ने उनको रिजेक्ट किया था. प्रभुपाद ने कहा नहीं, तो अगर मुझे भगवान मान तो दैट्स रॉन्ग. अल्टीमेटली क्या होगा कि वो सोचेंगे आगे जाके जब हम गुरु बनेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे. ऑल दिस मिसकंसेप्शन ऑल्सो, कई बार फिलोसॉफिकल मिसकंसेप्शन बहुत बड़ा नुकसान कर देता है. यू नो आई नो सर्टेन पीपल प्रवचन भी देते हैं, कहीं उनके फॉलोअर्स होते हैं उनके, यू नो कौन को कहीं उनको शिक्षा गुरु मानते हैं, बहुत सो मेनी थिंग्स, लेकिन उनका फिलोसॉफिकल डिविएशन देखा जाता है एकदम क्लियरली. वो करता भी है कई सालों से प्रचार, बट फिर भी वो डिविएशन है उसका, तो वो शुद्ध ज्ञान नहीं दे रहा है, तो क्या कर सकते. दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज मिसकंसेप्शन. बिकॉज सो उसका बेनिफिट क्या है, इजी एंड बेनिफिशियल. चैंटिंग जो है वो बड़ा आसान है और इस्कॉन के भक्तों के साथ में रहकर गया, इस्कॉन के अंतर्गत वी शुड चैंट होली नेम, लाइक अंडर इस्कॉन इनिशिएशन और इस्कॉन मूवमेंट के अंदर में रह करके चैंटिंग करने का अधिक फायदा प्राप्त हुआ. क्यों? दिस इज कमिंग फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु एंड प्रभुपाद. सो लाइक दिस श्रवणम कीर्तन को आगे बढ़ाना चाहिए या हरिनाम को जब पर ध्यान देना चाहिए. एक बार एक भक्त ने कहा था कि द रियल टेम्पल मैनेजमेंट का अर्थ था है श्रवणम कीर्तनम को आगे बढ़ाना, अधिक अच्छे तरह से करना. दैट इज रियल टेम्पल मैनेजमेंट. और हमें एकांत स्थान में बैठ करके जब करना चाहिए प्रभु, कोई पेड़ वेड़ ढूंढ लेना चाहिए? नो. कलयुग में ये आपको डुप्लीसिटी के चीटिंग प्रोपेंसिटी पर ले जाएगा, इसलिए उसको केवल सुनने का प्रयास करना, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए. जस्ट ट्राई टू हियर द होली नेम. तो पहले क्या होगा, श्रद्धा होगी, वो आपका सिस्टम तो आप जानते हो पूरा. पहले आपकी श्रद्धा होगी, थोड़ा इच्छा होगा, और फिर धीरे धीरे आप इस्कॉन के साथ जुड़ोगे, फिर साधु संघ होगा, इस्कॉन के भक्त आपको जोड़ेंगे भक्ति में, संकीर्तन में जोड़ेंगे, या फिर आपको आप कथा सुनोगे, लेक्चर सुनोगे, फिर आप किसी भी कोने में ये तो कर सकते हो. फिर आप भक्तों को देख देख कर देखने का प्रयास करते हो, उसमें रुचि बढ़ती है, फिर भजन क्रिया शुरू करते हो, सोलह माला चैंटिंग शुरू हो जाती है, जो चार नियम का पालन शुरू करते हो, फिर धीरे धीरे आप दोषों से मुक्त होने लगते हो, फिर अनर्थ निवृत्ति धीरे धीरे शुरू होती है, आप नियमों का पालन करने लगते हो, अपराध से बचने का प्रयास करते हो, आप नॉन कृष्ण प्रसाद है वो ऐसा कुछ खाते नहीं कि जो भगवान का ऑफर नहीं किया गया है, लाइक धीरे 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 यू गेट इम्प्रूवमेंट. भक्तिवान ठाकुर कहते हैं इसके ऊपर कि जो इनअटेंटिव चैंटिंग होता है, इनअटेंटिव चैंटिंग, जैसे एक होता है नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम, तीन कैटेगरी है चैंटिंग की. तो आई जस्ट रीड फ्रॉम परपर्ट श्रीमद भागवतम परपर्ट, थ्री कैटेगरी स्टेजेस इन चैंटिंग ऑफ द होली नेम. पहला है जो दस नाम अपराध का जप करते हुए, दस अपराध करते हुए चैंटिंग करता है, वो अपराध युक्त जाप है. दूसरा होता है नाम आभास का अवस्था, जिसमें अपराध से बचने का प्रयास करता है और अधिकतर वो अपराध से निकल गया है, पूरे पूरा नहीं निकला लेकिन गया है, अपराध से निकला है, तो वो नाम आभास है. और थर्ड स्टेज है शुद्ध नाम, जिसमें सब प्रकार के अपराध नष्ट हो गए हैं और उसका जो हृदय है वो पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम से आकर्षित हुआ. तो अपराध वाली जो सिचुएशन है उसमें सिद्धांत का पालन करता है, नियमों का पालन करता है, सोलह माला जब भी करता है, लेकिन अपराध भी हो जाए, अपराध भी करता है अज्ञानता से, तो फिर वो धीरे 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 इंप्रूव करने का प्रयास करता है. भगवान के पंचतत्व के लिए ये अपराध नहीं होते, हरि नाम के लिए अपराध होते हैं. फिर नामाभास की अवस्था में प्रभुपाद का लेक्चर है, उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि वो बार बार प्रयास करता रहता कि किस तरह से मैं इसमें से निकल जाऊं अपराध युक्त, तो धीरे 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 वो अवस्था नामाभास तक पहुंच जाती है. वो आपको उस अवस्था तक पहुंचा देता है, क्लीनिंग स्टेज, क्लियरिंग स्टेज बोलते हैं उसको. कृष्ण बहुत दयालु है, देखेंगे कि ये बेचारा प्रयास करे तो सहायता भी करते हैं. क्वालिफिकेशन क्या है? सिंसियर होना बस. आप सिंसियर होंगे तो कृष्ण आपको सहायता करेंगे. वो केवल जप नहीं करना चाहता है, करने के लिए एक्चुअली उसको जप अच्छे से करने का इच्छा है, तो फिर वो सिंसियर या सीरियसली चैंटिंग करने का प्रयास करता है. देन कृष्ण हेल्प्स, देयर इज नाम आभास. देन शुद्ध नाम, शुद्ध नाम का अर्थ होता है वो सब प्रकार के अपराधों से जब वो क्लियर हो गया है, मुक्त हो गया है, उसका चैंटिंग हुई ऑफेंसलेस है, मैकेनिकल नहीं हुआ है. सो लाइक दिस द चैंटिंग गोज ऑन एंड दिस मेक्स हिम एडवांस ऑन शुद्ध नाम. तो इनअटेंटिव चैंटिंग जो होता है शुरुआत में, उसमें तीन महत्वपूर्ण चीज होती है, वो तो सब आपको हमने पहले एक बार बता दिया था. एक होता है औदासीन्य, भक्तिवान ठाकुर ने बताया था. औदासीन्य का अर्थ क्या होता है, ऐसा भक्त दिखता है बड़ा सिंसियर, लेकिन उसके अंदर हृदय में बहुत सारी इच्छाएं पास करते और घूमता फिरता है, तो वो चैंटिंग के प्रति इतना कंसर्न नहीं होता है। दूसरा होता है विक्षेप, इन्हें न्यू चैंटिंग, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। विक्षेप में क्या होता है, दुनिया भर की चीजें उसको डिस्ट्रैक्ट करती रहती है, डिस्ट्रैक्शंस। और जाड्य, तीसरा है जाड्य, जाड्य में क्या होता है, वो आलसी होता है, उसको सोना बहुत अच्छा लगता है, वो इम्प्रूवमेंट का इच्छा नहीं करता, बोले पढ़ जैसा हो रहा है होने दो ना प्रभु जी, वो करेंगे प्रभु जी, उसको उसको सुनने से ही आपको नींद आ जाए, उसकी बात सुनते ही आपको नींद आए, ऐसा लेजी होता है। और इसका क्या परिणाम आता है, ऐसी इस प्रकार का जो चैंटिंग करता है वो, उसकी भौतिक इच्छाएं कम नहीं होती है, राधर वो तो बढ़ती जाती है, उसका जो आध्यात्मिक अवस्था के प्रति जो लगाव वो सब कम होता जाता है, और फिर कभी कभी वो रिबेलियस हो जाता है, रिबेलियस अर्थात विरोध करने वाला हो जाता है, और फिर वो ऐसी रिबेलियस अवस्था में वो पागली बन जाता है पूरा, वो भक्ति वक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है। इस तरह से अगर कोई शुद्ध नाम तक पहुंच जाता है, अगर नाम आभास तक आता है, तो धीरे धीरे फिर वो भाव भक्ति तक पहुंच जाता है, एंड देन अल्टीमेटली ही इज सेटल्ड डाउन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक बार कन्वर्सेशन बिटवीन लोकनाथ स्वामी एंड प्रभुपाद, एंड बिफोर दैट आई कैन टॉक अबाउट ब्रह्मानंद, तो एक भक्त ने प्रभुपाद को प्रश्न पूछा कि हम लोग सोला माला जब करते हैं तो कभी हमें नहीं पता होता कि हम सिंसियर है कि नहीं, तो प्रभुपाद ने कहा आपको पता होना चाहिए। तो भक्तों ने कहा, भक्त ने कहा कि कैसे पता करें, तो प्रभुपाद ने कहा ये आपकी माला रही, दीज आर बीट्स, ये माला है जप माला। तो ब्रह्मानंद प्रभु ने कहा कि नो, ये कह रहे हैं कि जब उस माला का जप करते हैं तो हम कैसे पता पड़े कि हमारी जो चैंटिंग है अटेंटिव है, सिंसियर है या अच्छी है। तो फिर प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि शास्त्र कहते हैं इसीलिए कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यू मस्ट चैंट, आपको चैंटिंग करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स प्रभुपाद सेड कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी, फर्स्ट इज क्वांटिटी एंड देन कम्स क्वालिटी। तो क्वालिटी के बाद फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास हजार जीवा होती। इम्प्रूविंग क्वालिटी, चैंटिंग क्वालिटी, नॉट टू स्लिपिंग क्वालिटी। लेकिन क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहिए, और क्वालिटी चिप नहीं होती है, अनेक अनेक जन्मों के बाद मिलती है। दुनिया एकदम जगह सोम, दैट इज क्वालिटी, तो वो बाद में आती है। फर्स्ट यू हैव टू चैंट योर राउंड्स एवरी डे। हाउ आई कैन इम्प्रूव चैंटिंग, प्रभुपाद सेड वन कैन इम्प्रूव द चैंटिंग बाय मोर चैंटिंग। आप इम्प्रूव कर सकते हो चैंटिंग को, अधिक चैंटिंग करके। लोकनाथ स्वामी आस्क्ड प्रभुपाद, प्रभुपाद व्हाई हैव यू चूजन 16 राउंड्स एज अ नंबर ऑफ चैंट। प्रभुपाद ने कहा कि, लोकनाथ स्वामी ने कहा कि प्रभुपाद आपने 16 माला की संख्या क्यों तय की माला जप करने के लिए, क्यों कम किया, कोई ज्यादा क्यों नहीं की। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि हमने 16 फिक्स कर दिया है, तो लोकनाथ स्वामी से हम लोग 16 माला तो जप करते हैं ना। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया नहीं, हम कहते हैं कि मिनिमम 16 माला जप। तो फिर लोकनाथ स्वामी बोले हाँ, तो ये मिनिमम 16 माला क्यों। तो फिर प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि अगर आप 16 माला कर सकते हो तो वो करो, वो मिनिमम है। अगर आप 16,000 माला कर सकते हो तो आपका स्वागत है, हमारे पास इतनी सारी सेवाएं हैं। जब हम कहते हैं, जब फिर भी हम कहते हैं कि हमारे पास कोई एंगेजमेंट नहीं है, ये हमारी समस्या है। हरिदास ठाकुर निरंतर चैंटिंग कर रहे थे, जब एक जो प्रोस्टिट्यूट वहां पर आई थी उसने कहा कि चलो भोग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी माला का जप कर लेने दो। हरिदास ठाकुर ने कहा बिकॉज आई एम एंगेज इन चैंटिंग, So 24 hours engagement he has given. So we see there is no engagement. So, I mean, the point is that chanting minimum rounds and serving, that is important. Then Loknath Swami answered ki kuch bhakt hai jinhone 16 ke badle koi aur number minimum kiya hai, jaise 20 25 aise. So Prabhupada ka, yes, that should be increased. Loknath Swami said, is it recommended? Prabhupada said, don't decrease, always increase. Kam nahi karna hai. Zyada aap kitna bhi kar sakte ho. Then Loknath Swami said, but why you are recommending 16 as a minimum? Some devotees are choosing 20 as a minimum. So Prabhupada said, who forbids? Who says that don't do it? So they can chant? Prabhupada said, yes, they should chant. That is required. But because you cannot do it, therefore we have fixed 16 minimum. Sankhya. Sankhyat. Sankhyat. The conversation was there. Then Jashomadi Nandan Prabhu was also present that time. Jashomadi Nandan Prabhu told Prabhupada, Prabhupada said, that chanting is higher than any other activity, dusre sare kaam se jyada mahan hai. या फिर एक समान है कोई भी कार्य कृष्ण भावना उसमें या चैंडिंग सबसे उत्तम ऐसा माना जाता है. प्रभुपाद से सब कुछ एग्जॉल्टेड है, सब कुछ उत्तम है, इसलिए श्रवणम की तरह 9 विधियां है. देन जशोदानंद रू सेड, तो व्हाई इज चैंडिंग पर्टिकुलरली रिकमेंडेड इन दिस एज? इसलिए तो फिर माला या चैंटिंग के ऊपर इतना बल क्यों दिया गया इस युग में? देन प्रभुपाद आंसर्ड, suppose you have no temple, you cannot perform archana. Agar aapke paas mandir nahi hai, to aap archana nahi kar sakte. Ye common sense hai. To aapki bhakti ruk sakti hai. Isliye 9 vidhiyan hai. So like this, there was a long discussion. The idea is there, iska pinche ka jo idea hai, wo Prabhupada ye kehna chahte the, ki hume 16 mala minimum karni hai, aur adhik sevaye karni hai. और फिर भी आपके पास अगर समय बचता है तो आप 16 से अधिक माला अवश्य कर सकते हो. दिस इज नॉट मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम. सो दिस इज द आइडिया, द मोर यू चैंट द मोर बेटर यू चैंट. सो एनी क्वेश्चन इन दिस एंड देन वी कैन गो टू नेक्स्ट स्टॉप. ओके, सो टेक्स्ट नंबर 8.
समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 2400 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमश व्यस्त रहे. इस तरह उसे व्रज गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए. मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है.
जैसे हमने पहले आपसे चर्चा किया था, अभी टेक्स्ट नंबर 7 के बाद फिर ये भाव भक्ति और फिर प्रेम भक्ति की और हमारा ये डिस्कशन जाएगा, बिकॉज टेक्स्ट नंबर 8 इज इवन ऑन एडवांस लेवल. भगवान के नामों को, लीलाओं को 24 घंटे स्मरण करना है और सुनना है, चिंतन करना है, नाम रूप लीला धाम सबको. इन दैट वे वी कैन सेटल आवर सेल्फ. नाम रूप चरिता आदि, नाम रूप चरिता आदि सुकीर्तिनान सुकीर्तनान स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नये अखिलमिति उपदेश सार. तो मन को भगवान के चरणों में स्थिर करना, ये बड़ा आवश्यक है। मन को ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मन भगवत गीता में क्या कहा है, मन शत्रु भी है और मन क्या है, मित्र भी है। जो मन उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव यो आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुनात्मना, ये सुना है ना आपने श्लोक। वन मस्ट डिलीवर हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ हिज माइंड, मनुष्य को अपने मन की सहायता से अपने आप का उद्धार करना चाहिए, उसका गिराना नहीं चाहिए। बद्ध जीवात्मा का जो शत्रु मन जो है वो मित्र कब हो सकता है, या उसका उद्धार करे, और वही मन जो आपका उद्धार करने के बदले आपको गिरा देता है वो आपका शत्रु है। इसलिए जिस व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त किया है वो उसका मन उसके लिए सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जिसने ऐसा करने में वो फेल हो गया है तो वो उसके एक बहुत बड़े शत्रु के साथ वो जीवन जीता रहता है। और ये मन जो है वो हमारा स्टोर हाउस है, क्या इम्प्रेशन, अनेक 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 हजारों जन्मों की जो इम्प्रेशंस है, जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंसेस है, वो इसके ऊपर स्थिर होती जाती है और फिर हमें सिखाता है, समझाता है, याद दिलाता है, गिराता है, उठाता है। दिस इज वेरी डेंजरस कि हम ऐसे मन को साथ में लेके घूमते हैं अगर वो भक्त नहीं है तो। यम यम वापि स्मरण भावम यदि अंत्य कलेवरम, फिर वो आपको दूसरे स्थान में, दूसरे शरीर में आपको ले जाएगा। तो उसकी चर्चा हमने किया था भगवत गीता में, मन और बुद्धि वास्तव में हमारे नेक्स्ट जो शरीर है उसका निर्माण करती है। अगर हम मन को शत्रु बनाएंगे तो अवश्य ही हम गधे की योनि में या बंदर की योनि में या फिर इस प्रकार की योनियों में गिर सकते हैं, दूसरा शरीर दिला सकता है। लेकिन अगर हम कृष्ण का चिंतन करते हैं तो भगवान कहते हैं कि वो मेरे पास आएगा। इसलिए कृष्ण को चिंतन करने में, रिमाइंड, रिमेम्बर, याद करने के लिए मन को ट्रेनिंग देना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और मन को कैसे ट्रेन किया जाता है, कृष्णम भक्ति सिंधु में लिखा है, कृष्णम स्मरम जन्मचास्य श्रेष्ठम निजसम इतम तत्त कथा रतस्चासौ कुर्याद वासम ब्रजे सदा। मन को कैसे वश में किया जाए, ट्रेन किया जाता है, मन को ट्रेन करने के लिए निरंतर ब्रज में रहना चाहिए, ब्रज में रहने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात भक्तों के संग में रहना, भगवान के भक्तों के संगति में रहना, निरंतर ऐसा प्रयास करना चाहिए। उन्नत जो भक्त होते हैं, एडवांस डिवोटीज, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए और अधिक से अधिक कृष्णा और उनकी कथाओं को पढ़ना या सुनना चाहिए। तो इस तरह से फिर ये प्रोसेस में अगर हम जुड़ेंगे भगवान को चिंतन करने की, स्मरण करने की प्रोसेस में, तो ऑटोमेटिकली मन जो है, मन के लिए क्या, मन को एक्टिव रखना पड़ता है। अगर मन को आप थोड़ा सा भी चांस देते हो तो तुरंत वो गड़बड़ी शुरू कर देता है, मन को बिजी रखना पड़ता है। हो सकता है आप कहेंगे प्रभु जी मेरा तो इंजन ही गर्म हो जाता है मन को अगर निरंतर कृष्ण में रखते हैं तो, लेकिन आप शुरू शुरू में ऐसा लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसका परिणाम आएगा कि आप फिर आदत ही हो जाओगे उसके, निरंतर कृष्ण के चिंतन करने में। और भौतिक चिंतन में तो आपको कष्ट होता है, आध्यात्मिक चिंतन में तो आपको आनंद आएगा। ऐसे श्रवण करके स्मरण करना चाहिए भक्तों को, एक अलग अलग स्टेजेस होते हैं रिमेम्बरर्स के। एक होता है श्रवण दशा, श्रवण दशा का अर्थ होता है स्टेज ऑफ हियरिंग, जब आप कोई कथा बता रहे हो आप उसको सुन रहे हो कोई भक्त, दैट इज श्रवण दशा। और फिर वो श्रवण करने के पश्चात वो भक्त वर्ण दशा पर पहुंचता है, वर्ण दशा का अर्थ होता है एक्सेप्टेंस, वो आप जो कुछ बताया गया है उसको स्वीकार करते, दैट इज वरम दशा। उसके बाद तीसरा होता है स्मरणावस्था। स्मरणावस्था का अर्थ होता है आप उसको रिमेम्बर करते हो, उसको याद करते हो, उसका उच्चारण करते हो, स्मरणावस्था। और ये स्मरणावस्था के भी, कृष्ण स्मरण के भी पांच स्टेजेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे पांच स्टेजेस से फिर वो आगे बढ़ता है। एक होता है इंटरप्टेड अवस्था, चिंतन की इंटरप्टेड अवस्था। इंटरप्टेड अवस्था की होता है, ये तीसरा है मरणावस्था, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पांच स्टेजेस होते हैं, उसमें एक होता है इंटरप्टेड। इंटरप्टेड क्या होता है, बहुत सारे व्यवधान आते हैं उसमें, स्मरण होता है लेकिन कभी इसका हुआ कभी उसका हुआ, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है उसके। फिर धीरे धीरे आता है अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड का अर्थ होता है इसमें व्यवधान नहीं आते हैं, या फिर ऑलमोस्ट इंटरप्शन खत्म हो गया है। फिर तीसरा अवस्था होता है अनइंटरप्टेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, फिर वो कॉन्सेंट्रेट होता है, ध्यान की अवस्था उसको बोलते हैं। तो भक्त जो होता है वो फिर उच्च अवस्था प्राप्त करता है, ध्यान की अवस्था, द हायर अंडरस्टैंडिंग। इट कम्स लेटर स्टेज, लेकिन हम इसको सीख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड अवस्था। चौथा है वो वही ध्यान अवस्था एक्सपांड होती है तो फिर वो अनुस्मृति बन जाती है। अनुस्मृति का अर्थ क्या होता है, कॉन्स्टेंट, निरंतर चलता है वो। जैसे हमारे गोस्वामी लोग थे, और वो अनुस्मृति जब आगे बढ़ जाती है, अनुस्मृति, फिर वो अनुस्मृति अनइंटरप्टेड एंड अनसीजिंग कॉन्स्टेंट हो जाती है, तो वो बन जाती है समाधि अवस्था। तो ये स्मरण अवस्था, धीरे 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 श्रवण दशा, वरम दशा, स्मरण अवस्था, और उसके बाद फिर संपत्ति दशा। संपत्ति दशा समाधि के बाद होता है।
लेट मी फिनिश। ओके।
संपत्ति दशा इज द लास्ट अवस्था, एंड देयर इज इटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्ण इज रिवील्ड एट दैट पॉइंट। आपका जो वास्तविक रिलेशनशिप है शाश्वत, आपका जो स्वरूप अवस्था है वो रिवील हो जाता है, एंड दैट इज उत्तम अवस्था, संपत्ति दशा। ओके, नाउ यू कैन आस्क।
सॉरी प्रभु जी टू इंटरप्ट, ये फिफ्थ फाइव स्टेजेस में फिफ्थ वाला कौन सा था, जैसे कि इंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड, इंटरप्टेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, फिर अनुस्मृति आपने बोला, एंड व्हाट वाज द फिफ्थ वन?
फिफ्थ वन इज दैट अनइंटरप्टेड एंड अनसीजिंग अनुस्मृति।
अनइंटरप्टेड एंड
अनसीजिंग कॉन्स्टेंट।
ओके,
और क्वेश्चन? दिस इज द प्रोसेस, एंड देन हाउ टू सर्व।
यस प्रभु, जैसे ये स्मरण का है जो टॉपिक, उस पर जैसे भगवान ने भी बताया है यूमाम पश्यति सर्वत्र, और हम एक गेम भी ऐसे खेले है कि जैसे जिसमें हम वी आर ट्राइंग टू, मैं कोई भी एक वर्ड आए, जैसे हमने एक्सरसाइज भी किया है भक्ति शास्त्र में कि जैसे हवा, पानी, पंखा, तो वी ट्राई टू कनेक्ट एवरीथिंग विद कृष्ण। मगर वो जब गेम खेलते हैं तब हम प्रयास करते हैं, राइट, बट प्रैक्टिकली ये ऐसा होता नहीं है, एटलीस्ट मेरे साथ नहीं होता है। तो मतलब कुछ कैन यू डू सम टिप्स के, मतलब जैसे हम धीरे धीरे रूटीन हम डीलिंग करते हैं उसमें हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का वी ट्राई एंड कोर दैट एवरीथिंग टू कृष्णा मरण कर सके।
इसलिए प्रभुपाद जी ने इसका बड़ा आसान उपाय दिया है। प्रभुपाद इज वेरी क्लियरली हाउ टू इम्प्रूव दैट पार्ट। प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया हमें कि जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल की जानी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि वॉट गुरु वॉन्ट्स, वॉट प्रभुपाद वॉन्ट्स, वॉट कृष्णा वॉन्ट्स, वॉट चैतन्य महाप्रभु वॉन्ट्स। वेन यू वॉन्ट टू सर्व कृष्णा, यू नो यू वॉन्ट टू रिमेम्बर कृष्णा, बट यू कैन रिमेम्बर बाय फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शन। आप उनको स्मरण कर सकते हो आप उनके आदेश का पालन करके। अगर समझ लो कि एक स्वामी है और एक सेवक है, तो सेवक का काम है स्वामी की जो भी इच्छा है वो पूरी करना। स्वामी हमारे सौभाग्य से स्वामी जो है वो भगवान है, अर्थात ये नहीं कि हम किसी स्वामी को भगवान बोल रहे, आई मीन टू से कि कृष्ण हमारे स्वामी है, कृष्ण इज एक्चुअली अवर मास्टर। तो यह प्रभुपाद उनकी इच्छा को समझ करके उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करना। अब क्या होता है कि व्हेन यू फुलफिल कृष्णस डिजायर So you are always engaged in serving him. When you are engaged in serving him, so in that case, you are constantly thinking of Krishna. अभी ऐसा लगेगा नहीं प्रभु जी मेरी तो ऐसी अवस्था नहीं है, लेकिन वही चीज अगर आप करते जाएंगे तो क्या होगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता 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 उस अवस्था पर आ जाएगा. उसको मैकेनिकली प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इट हैपन्स बाय जस्ट सर्विंग कृष्णा एंड ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड. प्रभुपाद जैसे प्रभुपाद एक जगह पर गुजर रहे थे विदेश में, तो एक होटल का नाम था जिसके ऊपर सी से ऊपर कुछ नाम था, सी आई समथिंग ऐसा है कुछ लिखा हुआ था. तो प्रभुपाद ने देखा और प्रभुपाद ने कहा अच्छा यहाँ चिंतामणि नाम के होटल है चिंतामणि. तो फिर बाद में पता पड़ा नहीं वो स्पेलिंग कुछ गलत था. मीन्स दैट जैसे माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी आकाश में बादल को देखते थे और उनको कृष्ण की स्मृति हो जाती थी. बट दिस इज ऑटोमेटिकली कम्स बाय सर्विंग एंड प्लीजिंग कृष्ण एंड गुरु. यू कैनॉट ब्रिंग इट मैकेनिकली.
Thank you, Guru.
Hare Krishna, Prabhu ji. I have a query. मतलब इस particular text को लेके handbook में एक question था, which I wasn't able to understand. क्योंकि इसमें अभी जो ये 5 stages बताया या जो अलग अलग stage है, these are the different stages of sadhana है कि क्या है?
No. ये जो हमने stages बताया है, वो रिमेम्बरेंस स्मरण के 5 स्टेज.
हाँ वो तो वो स्मरण के 5 ठीक है, लेकिन पहले आपने श्रवण बताया एंड देन जो दूसरे बताए थे
श्रवण दशा वरण दशा.
हाँ श्रवण दशा वरण दशा देन स्मरण एंड देन संपत्ति, ये जो 4 दशा थी.
प्रोग्रेस चार्ट.
प्रोग्रेस चार्ट मीन्स सी लेट मी जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन कि वो जो क्वेश्चन है हैंडबुक का वो इस प्रकार से है. इन द ट्रांसेंडेंटल रेलम ऑफ रजा वन शुड सर्व द सुप्रीम लॉर्ड विच विथ द फीलिंग सिमिलर टू दैट ऑफ हिज एसोसिएट एंड वन शुड प्लेस हिमसेल्फ अंडर द डायरेक्ट गाइडेंस ऑफ पर्टिकुलर एसोसिएट ऑफ कृष्णा एंड शुड फॉलो इन हिज फुटस्टेप. दिस मेथड इज एप्लीकेबल बोथ इन द स्टेज ऑफ साधना एंड इन द स्टेज ऑफ साध्या. When one is in Siddha Purush or a spirituality perfect soul. Now explain the different kinds of sadhana, which one does the above quote refer to? So, ye wala prashn jo hai, I mean, kiske reference ka tha, that I wasn't
the
able
last to. Thing you are, I could not hear that.
Explain the different kinds of sadhana, which one does the above quote refer to?
Yeah.
और ये स्पेसिफिकली टेक्स्ट 8 को रिलेट करके पूछा गया है.
या सो दिस इज जैसे हमने आपको बताया था एक बार शुरुआत में कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उसमें शुरुआत की जो वैदिक साधन है उसके बाद फिर रागानों का साधन भाव भक्ति और प्रेम भक्ति. तो ये 11 के 11 जो श्लोका है उसका इस प्रकार से डिवीजन बना हुआ है. सो 8वें श्लोक से रागानों का भक्ति शुरुआत होती है. जो जो जिस चर्चा यहाँ पर हुई है इस श्लोक इस जो 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 चीज आपने पढ़ा दैट इज रागानों का साधन भक्ति की बात हुई है. दैट इज रागानों का साधन भक्ति. वैधि साधन भक्ति उसके 1 से 7 तक जो था ना वो वैधि साधन भक्ति में आता है.
ओके प्रभु जी
दरवाजा खुल गया. So, okay, so, भक्ति रसामृत में हमने ये भी सुना था कि सेवा कैसे की जानी चाहिए. तो वही चीज जैसे हमने आपको बताया रागानुगा में यू हैव टू चूज द डिवोटीज इन वृंदावन एंड हैव द सिमिलर फीलिंग एंड देन सरेंडर टू देम. उनके गाइडेंस में रखना चाहिए पर्टिकुलर पार्षद के और उनके कदमों पे चलना. दैट इज रागानुगा साधन भक्ति. उसमें वो साधन का अवस्था में भी वो काम करता है साध्य अवस्था में. साध्य जो बोझ साधन का अर्थ होता है प्रैक्टिशनर एंड परफेक्शन स्टेज. दोनों ही अवस्था में ये सिद्ध अवस्था और साध्य साधक अवस्था दोनों में ये कार्य करता है सेम सिस्टम. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके ऊपर कमेंट करते हैं कि जिसने कृष्ण भावनामृत में रुचि विकसित नहीं की है उन लोग को क्या करना चाहिए. उनको भौतिक इच्छाओं का त्याग करना चाहिए और रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स अर्थात जो उत्तम कोटि की भक्ति में पहुंच नहीं पाया है उनको इस तरह से बेबी स्टेप्स लेने चाहिए. समटाइम आई कॉल इट, अगर आपको देखने में ऐसा मिले विल टॉक अबाउट दिस कि प्रिलिमिनरी आपकी जो डिवोशनल सर्विस है उसमें अगर आपको संतोष ना हो उसमें ही आपकी समस्या है तो फिर आपको एक बार रिसेट बटन दबा देना चाहिए. कंप्यूटर पे रिसेट होता है ना, तो रिसेट बटन दबाना चाहिए, फिर उस तरह से आगे बढ़ना चाहिए. तो मन को रेगुलरी प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए ट्रेन करना चाहिए और वृंदावन में रहने का प्रयास करना चाहिए. वृंदावन का अर्थ होता है जहां पर निरंतर कृष्ण के नाम गुण लीला उनके स्वरूप रूप उनकी चर्चा होती है उसकी महिमा. तो ऐसे भक्त के पास जाना चाहिए और उसके साथ इस विषय में बात करनी चाहिए और एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर में रह करके एक्सपर्ट डिवोटी के अंदर में रह करके अपनी सेवा अपने भक्ति की विधियों का पालन करना चाहिए. सो इन दिस वे वन कैन कम अप फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज. तो वैदिक साधन भक्ति और रागनों का साधन भक्ति उसका हमने ऑलरेडी चर्चा किया था तो आई बिलीव दैट आई डोंट नीड टू रिपीट दैट हियर.
यस सर.
या तो यू कैन गो टू टेक्स्ट नंबर 9 बट बिफोर दैट एनी क्वेश्चन.
हरीश वो यहाँ पे पांच अलग अलग प्रकार के जो रस है उनका एग्जांपल दिया गया है. जैसे कि शांत रस में कोई एक एस्पायर करता है तो उसको कृष्णा की गाय है या फिर लाठी उसकी जरूरत है गाय चराने के लिए, या फिर फ्लूट है या फिर कृष्णा के हाथ में है फ्लूट, या फिर कोई फ्लावर है तो उसके उसमें उनको शांत रस का आस्वादन कर सकते हैं.
yes.
तो शांत रस में भी नॉर्मल दूसरा शांत न्यूट्रलिटी होता है तो हम जैसे देखा गया कि चार कुमार है वो पहले शांत रस में ही थे तो बाद में भक्त बने. तो ये भी डिवोटीज ही है ना, कृष्णा की गाय है या फिर फ्लूट है, बिकॉज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरीथिंग इज लाइव एंड लाइव होता है. तो उनके भी शांत रस में भी एक रिलेशनशिप भी होगा ना कृष्णा के साथ उनके.
या शांत रस में रिलेशनशिप का अर्थ ही होता है कि दैट इज अ रिलेशनशिप. केवल उसमें समस्या ये होती है कि दे कैन नॉट एक्सचेंज लव. ऑफ कोर्स कृष्ण की गाय वगैरह तो कृष्ण को प्रेम करते थे बट उसमें भगवान को किसी रिलेशन के साथ जुड़ा नहीं. जैसे वो कृष्ण के माता पिता दास बनना, ये जो रिलेशन दास भक्ति से रिलेशन शुरू होता है और शांत में क्या होता है रिलेशन नहीं होता है. दिस इज जस्ट यू नो न्यूट्रल रिलेशन, देयर इज नो सच रिलेशन. लेकिन वो भगवान है और ये उनके भक्त है, बस दैट्स इट. बट देयर इज नो रिलेशन. रिलेशन स्टार्ट फ्रॉम दास्य. बिफोर दैट द अट्रैक्शन इज शांत रस. पेड़ है, पौधे है, एक्चुअली आप देखोगे वो लोग भी प्रेम करते थे बट वो लोग ये नहीं सोचते थे कि हम कृष्ण के दास है और हम कृष्ण की सेवा करेंगे या हम कृष्ण के सखा है. ऐसे नॉट लाइक दैट, दे वर नॉट थिंकिंग दिस वे. देयरफॉर इट इज कॉल्ड शांत रस.
ओके,
इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग? शांत रस, राइट?
यस, बिकॉज कोई भी पांच रस में तो रिलेशनशिप तो होंगे ही जिससे जिससे क्या है कि कृष्ण के साथ अलग काम कर सकते हैं.
कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितार्थ में इसके विषय में चर्चा करते हैं. वो कहते हैं कि जनरली हमारे जो भक्त होते हैं, आई मीन हमारे वैष्णव आचार्य, ये भक्ति की शुरुआत चार रस से ही करते हैं, दास्य रस. वो शांत रस को काउंट नहीं करते विशेष करके, क्योंकि शांत रस में बहुत लिमिटेड होता है. इट्स नॉट वेरी यू नो हाउ यू से नॉट रिसिप्रोकेटिव मच. लेकिन उसमें रिलेशन नहीं होता है. बट दास्य से ही भक्ति सुवत करते हैं. इसलिए शांत रस का स्थान है. बट दिस इज यू नो इट्स लाइक काइंड ऑफ यू नो हाउ यू से इट इज नॉट वेरी मच reciprocating with the Lord in a relationship, in a particular relation. So there is a problem in Sandras. So therefore it is very less developed devotional service. Aisa mana ja sakta. In particular, in sense of relationship. Phir wo usse aage badh sakta hai, sant wala, phir wo apne aapko dasya maan sakta hai, Krishna ko, main Krishna ka das, aisa wo maan sakta hai. But Shantras is not having the, you know, this kind, जिसको हमने बताया ना, उसका हमने एक बार आपको बताया था कि पंच महाभूत जो है, तो पंच महाभूत में जो सबसे पहला होता है वो होता है शब्द. तो शब्द में क्या होता है कि आप उसको केवल सुन सकते हो, जैसे आकाश, that is why. तो उसमें ना उसको देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना सुन सकते, I mean, न खा सकते, न स्पर्श कर सकते, न चख सकते. सो दिस इज डिवॉइड ऑफ वेराइटीज. देयरफॉर शांतरस इज डिवॉइड ऑफ वेराइटीज. बट व्हेन इट कम्स अंडर दास्य रस, देन दास्य हैज वंडरफुल एक्सचेंज एंड वेराइटीज एंड इट कैन सर्व लाइक चित्रक पत्रक. देर आर डिफरेंट डिवोटीज हनुमान लाइक दिस दास्य रस. And then further advancement, that comes sakhyaras. So jaise jaise advance hota jata hai, ye vikasit hota jata hai, waise waise ras badhta jata hai. Isliye dasya ras, that is actually exchange of love, more you know, in particular relationship. Shant ras mein ye sab cheez ka abhav hota hai. Therefore it is shant ras.
हरे कृष्ण प्रभु जी. ये जो जैसे कि टेंपल में कोई संडे बेसिस पे आता है, मे बी वंस इन अ मंथ आता है, तो दोज पीपल विदाउट एनी काइंड ऑफ रेसिप्रोकेशन और उनको शांत रस में कंसिडर कर सकते हैं क्या? जस्ट कम टू विजिट, हाथ जोड़ के चले जाते हैं. भाई टेंपल है, टेंपल में हाथ जोड़ के चले जाते हैं, तो उनको उनका कनेक्शन यहाँ पे रख सकते हैं क्या शांत रस में?
वेल कोई भी व्यक्ति उसका जो नीचे स्थिति है वो शांत दास सख्य वात्सल्य कोई भी हो सकता है, माधुर्य इसमें से कोई भी हो सकता है. स्वाभाविक आकर्षण तो तभी उसका पता पड़ता है जब, जैसे हमने एक बार आपको एग्जांपल दिया था कि बीज जो होता है भक्ति का बीज, वो बीज डालने के बाद उसमें श्रवणम कीर्तनम का पानी डालना पड़ता है. उसके बाद फिर जब उसमें से पौधा बनेगा और पौधे में से जब फूल आएगा तब पता पड़ेगा कि ये गुलाब का छोड़ था या फिर ये करेले का छोड़ था या किसका था, भी नहीं बोलना राइट. सो कौन भक्त शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य में स्थिर है वो उसकी भक्ति की प्रगति के माध्यम से ही वो समझ आएगा. क्योंकि अभी की अवस्था में जैसे कोई मंदिर दर्शन करने आता है वो तो अभी बीज को ही प्राप्त करता है, भक्ति रहता बीज, वो केवल बीज ही प्राप्त कर रहा है. सो इट इज too early to say कि somebody is in sakhya, somebody is in dasya, somebody is in sant. It's too early to say.
Okay.
Okay. So text number
9.
Translation.
मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे. मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है क्योंकि वहां कृष्ण ने रासलीला रचाई थी. वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा है और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा।
So, this is a wonderful narration. Now it is going further and further. Rupa Goswami le ja rahe aur aage. Sadhyatmik jagat ka jo kendra bindu hai, wo hai Radha Kund. Agar aap hierarchy dekhoge Adhyatmik Vishnu ki, to spiritual world mein bhi anek Vaikuntha planets hai, unlimited. Un sare Vaikuntha planets mein Mathura Mandal sarvashreshth hai. Aur wahi Mathura Mandal का बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा 84 कोस है, बहुत बड़ा स्टार, उसमें वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है। मथुरा मंडल से वृंदावन ऐसे भी कहा जाता है कि मथुरा में कृष्ण जन्म लिए इसलिए वो श्रेष्ठ है, वृंदावन में कृष्ण लीला किए इसलिए श्रेष्ठ है, और गोवर्धन में अधिक समय व्यतीत किए और वहां पर अधिक लीला की और वो श्रेष्ठ है, और राधाकुंड और वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ है वो गोवर्धन। वृंदावन का अर्थ ये नहीं कि आप जो वो मदन मोहन मंदिर वाला जो वृंदावन है वही वृंदावन, वृंदावन पूरा वहां से लेकर के नंदगांव बरसाना तक फैला हुआ है, तो उसके बीच में गोवर्धन भी आता है, तो ये वृंदावन एरिया माना जाता है, तो उसमें गोवर्धन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, गोवर्धन का जो एरिया है। गोवर्धन एरिया में भी बहुत सारे ऐसे गोवर्धन पिकॉक के रूप में है, और उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण जो जगह है वो है दो है, श्याम कुंड राधा कुंड, दो आंखें है गोवर्धन की, और उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है राधा कुंड, क्योंकि वो माधुर्य रस का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इसलिए अगर आप आध्यात्मिक स्थान की चर्चा करेंगे तो संसार में या पूरे अस्तित्व में राधा कुंड से अधिक महिमाशाली कोई स्थान कोई है ही नहीं। अगर लोगों की बात करें, भक्तों की बात करें, तो सबसे अगर आप एकदम बेसिक से देखोगे तो विकर्मी की जो विरोधी होता है शास्त्र का, फिर कर्मी तो शास्त्र को फॉलो करता है, फिर ज्ञानी जो नॉलेज का प्रयास करता है, फिर भक्त बनता है, उसमें कनिष्ठ अधिकारी भक्त बनता है, तो कनिष्ठ नियोफाइट बनता है, फिर वो आगे जाके मध्यम अधिकारी भक्त बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, फिर ऊपर जाकर के उत्तम अधिकारी बन जाता है, फिर उत्तम अधिकारी में भी कैटेगरी होती है, और आगे और सिद्धावस्था में वैकुंठ का पार्षद बन सकता है, उससे भी एडवांस होता है वो मथुरा मंडल वाला पार्षद, उससे भी एडवांस होता है वो वृंदावन का शाश्वत पार्षद, उससे भी आ करता है गोल्डन हिल रहने वाला, गोवर्धन लीला पे जो लीला उसका पास है, और उससे भी जो एडवांस होते हैं वो श्रीमती राधा या गोपियां कि जो राधा कुंड में कृष्ण की सेवा, तो नियोफाइट भक्त है वो एक रूप से सुपीरियर है ज्ञानियों और कर्मियों से, जैसा हमने ऑलरेडी चर्चा किया था। इसलिए सर्विस एटीट्यूड, जैसे जैसे इम्प्रूव होता जाता है वैसे 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 आध्यात्मिक अवस्था बढ़ती जाती है। That we should, try to understand. शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, तो शांत की अवस्था में आपको क्या मिलता है, भौतिक विश्व के रूप से, भौतिक विश्व में पूर्ण रूप से डिटैचमेंट, कोई इच्छा नहीं भौतिक विश्व में, और कृष्ण के प्रति फुल अटैचमेंट, वो तब वो व्यक्ति शांति में भक्ति में स्थिर हो सकता है। लेकिन जब उसमें सेवा जुड़ती है, व्हेन इट कम्स विद द सेवा, तो दास्य प्लस हो जाता है, तभी सेवा आती है, तब तक सेवा नहीं आती है, तब तक भगवान और भक्त का बस एक अटैच कनेक्शन रहता है, बट सर्विसेस नहीं होती है टू सर्व कृष्ण। So that is the main difference between Sant and Dasya. But Dasya mein plus hota hai Pitru Bhav, तो सॉरी मित्र भाव, जिसमें वो भगवान का जो महिमा है वो कम हो जाता है। बोले तुम कौन हो बड़ो लोग, तुम यामी सम, बोले तुम भगवान कैसे बन गया, अपने सब एक समान है, और फ्रेंड दैट बिकम सख्या। और उसमें जब मेंटेनेंस का भाव जुड़ जाता है तो वो वात्सल्य बन जाता है। ये सब सनातन गोस्वामी शिक्षा में है, ये चैतन्य चरितमृत में, चैतन्य लीला में है, ये सनातन शिक्षा में, फिर वो वात्सल्य बन जाता है। और वात्सल्य में ये इतना सारा होने के बाद माधुर्य कब बनता है, जब कोई व्यक्ति अपने पूरे शरीर को भगवान की सेवा के लिए समर्पित कर देता है, और आगे के जितने भी सांत दास सख्य वास्तव्य उसमें भी जितनी इंटीमेसी होती है उससे अधिक इंटीमेसी जब क्रिएट होती है, दैट इज बिकमिंग शांत दास सख्य वात्सल्य माधुर्य। तो हो सकता है कि हम इसके विषय में क्यों चर्चा करें, जबकि हम इस अवस्था तक पहुंचे ही नहीं अभी तक, तो हम इसके विषय में क्यों चर्चा करें, क्योंकि हमें सावधान भी रहना चाहिए इस चर्चा करते करते, क्योंकि रीजन है इसके इसमें चर्चा करने के टाइम पे। अगर आप भक्ति के मार्ग में निरंतर एज ए उच्च आदर्श को स्थापित करते हैं और फिर उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इसका परिणाम आएगा कि आप सावधान होकर के अधिक अच्छा सेवा करने का प्रयास करो, एंड यहाँ पर राधा कुंड की सेवा करने की बात हुई है। राधा कुंड की सेवा कैसे की जाती है, तो ऐसे तो आप कहोगे कि प्रभु कुंड की सेवा तो स्नान करके ही की जाती है। यस, उनकी स्तुति प्रार्थना आरती पूजा अर्चन विधि सबके माध्यम से पूजा हो सकती है। पांच तरीके से पूजा होती है ना, That we have discussed earlier. Anyway, हम इस तरह से हर एक चीज के अंदर डिटेल में नहीं जा सकते, बट anyway, सेवा पूजा कैसे होती है पांच तरीके से। तो उसमें एक होता है नति, ऑल्सो नति का अर्थ होता है प्रणाम, एक होता है पूजा जैसे दीप, तो एक होता है, और इन सारी चीजों से जो सबसे उत्तम होता है वो है सेवा, राधा कुंड की सेवा। कैसे? प्रचार, राधा कुंड की महिमा का प्रचार करके। जैसे हमारे डिवोटी है प्रभुपाद डिसाइपल राधा कुंड माता जी, उनका नाम ही राधा कुंड है, तो कई लोग उनको कहते थे कि आप राधा कुंड, आपका नाम है, आपको राधा कुंड की सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि राधा कुंड की सेवा मैं कैसे कर सकती हूँ, प्रभुपाद के ग्रंथ का वितरण करके। उन्होंने ऐसा भी उन्होंने कहा था कि एक दिन उनको एक सपना आया था, उस सपने में उन्होंने देखा कि वो प्रभुपाद का ग्रंथों का वितरण कर रहे थे, और जहां पर वो वितरण कर रहे थे वहीं पर राधा कुंड था। एक्चुअली राधा कुंड बाद में उनको दिखा, पहले वितरण कर रहे थे। तो आइडिया है कि आप गुरु और कृष्ण के लिए सेवा करो, जैसे प्रभुपाद भी चाहते तो राधा कुंड में जाकर रह सकते थे, लेकिन प्रभुपाद ने उनकी सेवा उनके तरीके से की, संसार भर में राधा कुंड की महिमा प्रस्थापित किया। राधा कुंड में रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम टू डिसाइड, दैट विल कम अगेन इन द नेक्स्ट श्लोकास में। तो इन द हियर वी जस्ट टॉक अबाउट दैट राधा कुंड जो है वो संसार का सबसे उत्तम स्थान माना जाता है, देयर इज नो बेटर प्लेस देन इट, एंड देयरफॉर वी शुड सर्व राधा कुंड, द वाटर ऑफ राधा कुंड, राधा कुंड का जल है, उसमें और राधा रानी के प्रेम में कोई अंतर नहीं, इट इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ द लव ऑफ राधा रानी। राधा प्रिय तथा तस्य कुंड प्रिय तथा, जैसे कृष्ण को राधा रानी प्रिय है वैसे ही राधा रानी का जो कुंड है राधा कुंड वो उनको उतना प्रिय है, इसलिए भक्तों का एक विशेष आकर्षण रहता है राधा कुंड के प्रति। यहाँ पर ब्यूटीफुल प्रॉपर का बहुत सुंदर तात्पर्य भी है कि बारह वर्ण का वर्णन है द्वादश कानन। हम लोग पहले आप गेम भी खेलते, चाहे आप लोग के साथ हमने खेला कि नहीं बता नहीं, ये बारह वर्णों का नाम विच सिक्वेंस, जैसे जिस सिक्वेंस में ये वन है उसी सिक्वेंस में बारह वर्ण का नाम आप नॉन स्टॉप बोल सकते हैं। यस,
आप में से कुछ तो होंगे यस बोलने वाले। ठीक है, बिना बिना किताब पढ़े 12 वर्ण के नाम बता सकते हैं? नो प्रभु, डर लगता है कि प्रभु अगर 12 में से 10वीं हुआ या 8वीं हुआ या 7वीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरे भक्त है ना आपकी बची हुई जो गिनती है उसको पूरी करने के लिए।
प्रभु जी बहुलावन, तालवन, भांडीरवन, काम्यवन, महावन, वृंदावन इसमें ही आएगा पता नहीं, वृंदावन, काम्यवन, अच्छा बोल दिया नहीं,
छह हुआ, छह अभी, छह और बाकी है।
प्रभु जी निधिवन, मधुवन,
कुमुदावन, कुमुदावन
क्या,
कुमुदावन,
कुमुदावन, अच्छा अच्छा आपको तो याद रहेगा ही।
प्रभु जी हाउवन,
हाउवन क्या होता है
प्रभु जी? शायद मैंने
कौन सा वन,
हाउ नहीं सॉरी हाउवन नहीं, एक मिनट, वहाँ पे जो राक्षस राक्षस वहाँ पे रहता था प्रभु जी,
वो वृंदावन।
ओके ओके,
उसका नाम वो हाउ बिलाव जगह है, आपने देखा है वो राक्षस का मूर्ति है।
अच्छा वो कथा सुनी है, वहाँ पे गए थे प्रभु जी?
मेरे पास फोटो भी है उसका, एक हाउ करके
जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी,
हाउ बिलाव नाम है उसका,
जी जी प्रभु,
यस। और
प्रभु जी अब मैं बोल दूँ सारे, अब मैं देख के बोल रहा
हूँ।
महावन, महावन, काम्यवन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, भांडीरवन, वृंदावन, खादिरवन, लोहावन, भद्रवन, बहुलावन और बेलवन, बेलवन, हाँ
बेलवन, बिल्वा, बिल्वावन, तो ये दिस आर द 12 फॉरेस्ट, याद रखना चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाहरी तो नाम है, ज्यादा तो है नहीं। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, काम्यवन, वृंदावन, रोहवन, वृंदावन, फिर वो और एक वन है बहुलवन, फिर एनीवे शनिदेव का मंदिर है, खदीर वन इज ऑल्सो देयर, दैट इज नियर नंदगांव थाना, खदीर वन, एंड देन ऑपोजिट नदी के इस पार 7, नदी से उस पार 5, तो 7 यहाँ क्या हो गए, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, वृंदावन, बहुलवन, खदीर वन, कितना हुआ और काम्यवन, 7। और उस साइड कौन से है, उस साइड यमुना के उस साइड है भद्रवन, भांडीरवन, महावन, लोहवन, महावन और बिल्ववन, ये उस साइड है, ये याद रखना चाहिए, वी शुड ट्राई टू डू इट, यस। भद्रवन में कुछ खास नहीं है, एक मंदिर है छोटा सा शिवलिंग है, ज्यादा कुछ नहीं है, भद्र वो ससुर कुमार, भांडीरवन बहुत सारी लीला है, महावन जो है वहां पर गोकुल था, गोकुल ब्रह्मांड का, ये सब महावन में आता है दाऊजी, फिर लोहवन है वहां पर भी बहुत ज्यादा अधिक लीलाएं नहीं हुई है, ऐसे तो बहुत सारी लीलाएं सब जगह, लेकिन फिर भी जो मुख्य स्थली है वहां पर लोहवन में एक ही मंदिर है, और फिर बिल्ववन, बिल्ववन यहाँ पर बिल्व वृक्ष थे और लक्ष्मी देवी ने तपस्या की थी, लाइक दिस देयर ब्यूटीफुल नरेशन ऑफ, जैसे आप में से कुछ भक्तों को तो ये कोरोना जाने दो, उसके बाद जब आपको सुविधा हो तो आपको ब्रजमंडल परिक्रमा करना चाहिए, 84 कोस की 12 वन की पैदल परिक्रमा करने का प्रयास करना चाहिए,
द आइडिया इज नॉट दैट हम वहां पर रहे, आइडिया है कि हमारी आध्यात्मिक जो स्थिति है उसको हम उन्नत करें, दैट्स द आइडिया. सो नाउ वी कैन गो टू टेक्स्ट नंबर 10
शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञानी में उन्नत होता है. ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यावहारिक रूप से मुक्त हो जाता है वह भक्ति ग्रहण कर सकता है. ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है, किंतु जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है वह उससे भी श्रेष्ठ है. गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों से उत्कृष्ट है क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती है. गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है. उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय यह राधा रानी. तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लासमय भक्ति भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालिया लीला संपन्न करते हैं उनकी प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा. निसंदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं.
यहाँ पर अलग अलग प्रकार के 84 लाख योनि है. 84 लाख योनि में से वो आप चैतन्य चरित में पढ़ेंगे ये सब आएगा इसमें. 84 लाख योनि में से मनुष्य शरीर मनुष्य श्रेष्ठ है. मनुष्य में जो जितने लोग हैं उसमें से कैटेगरीज में देखोगे तो अधिकतर तो विकर्मी होते हैं, उसमें से कर्मी श्रेष्ठ है, फिर ज्ञानी श्रेष्ठ है, उसमें ज्ञानी में से भक्त श्रेष्ठ, और भक्त में फिर कैटेगरीज आती है, उसमें सबसे उत्तम होता है श्रीमती राधा रानी. तो ये एलिवेशन अगर आप देखोगे जो हार्डकोर मटेरियलिस्टिक से लेकर के धीरे 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 उत्तम प्रकार के भक्त, उसमें उत्तम प्रकार के भक्तों में भी माधुर्य रस जो है वो सर्वश्रेष्ठ है. आह्लादिनी शक्ति भगवान की जो भक्त को आनंद देती है, उसमें भी दो प्रकार के प्रकार, एक स्वकीय और एक परकीय. स्वकीय और परकीय में क्या है कि भगवान और लक्ष्मी देवी का संबंध है वो विथ मैरिज है, और विदाउट मैरिज वाला जो है वो है परकिया, वो वृंदावन का गोपियों का जो है वो परकिया. और परकिया में भी दो प्रकार के कैटेगरीज है, एक होता है संभोग सुख और एक होता है विरह विप्रलंब, संभोग एंड विप्रलंब. तो विप्रलंब उसमें श्रेष्ठ है जिसमें भगवान का विरह प्राप्त होता है. तो लाइक दिस देयर आर कैटेगरीज वन बाय वन. महाप्रभु पूछते गए, रामानंदरा बोलते गए, महाप्रभु बोले एहो बाह्य आगे कहार, वो आगे बताया एहो बाह्य आगे कहार एहो बाह्य, फिर थोड़ी देर के बाद बोले एहो होय आगे कहार एहो होय आगे कहार. और कुछ एकदम माधुर्य भक्ति तक पहुंच गए रामानंदराय. बाद में जैसे महाप्रभु ने कहा वाह वाह यू आर सो ग्लोरियस रामानंदराय, यू आर सो ग्लोरियस, तुम इतना सब महिमा इतना सीक्रेट तुम जान जाते, ये उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन दे दिया, महाप्रभु ने उनको आलिंगन दे दिया. बाद में कहा कि आगे कहा, तब रामानंद राय चुप हो गए. रामानंद राय सोचने लगे मीन्स इससे भी आगे कुछ होता है. तो महाप्रभु से यस आगे कहा, तब फिर वो सोच नहीं पाया कि इससे आगे क्या हो सकता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको कृपा किया. देन ही सेड देन विप्रलंब इज द बेस्ट, देन ही सेड दिस थिंग. सो अभी हम सोचेंगे प्रभु जी कहाँ मैं कहाँ वो, लेकिन ये रोड मैप है, इस पर हमें चलना है और इस पर आगे बढ़ना है. इसके लिए हमें जो त्यागना पड़े त्यागना चाहिए, जो कीमत चुकानी पड़े चुकानी चाहिए, और जो सहन करना पड़े करना चाहिए. और परिणाम क्या आएगा कि हम प्रभुपाद की शिक्षाओं को फॉलो करते हुए राधा कुंड की महिमा को समझ पाएंगे. अभी क्या है, राधा कुंड हमारे लिए केवल एक पानी का एक कुंड है और कुछ नहीं है.
या ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे परिक्रमा करते समय दो दो चार बूंद सिर पे डालोगे आचमन ले लोगे व्हाट एल्स। लोगों ने बोला ये बड़ा अच्छा स्थान है तो दो माला जप कर लेते बैठ करके इधर और क्या व्हाट एल्स हमें कुछ नहीं पता व्हाट राधा कुंड इज बट व्हेन वी कम फर्दर देन इट इज पॉसिबल। जब हम राधा कुंड को कोई व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता है राधा कुंड की प्रेम को तभी उसकी बॉटल जो है ना उसका मध हनी का जो बॉटल है उसका ढक्कन आपके गुरु महाराज खोलेंगे उसी तभी उसका आप स्वाद चख पाओगे राधा कृष्ण की राधा गोविंद की प्रेम में दिव्य लीलाओं का। और ये ढक्कन खोलने के लिए हमें क्वालिफाइड बनना पड़ता है और ये क्वालिफाइड बनने के लिए हमें जो मटेरियल कचरा हृदय के अंदर भरा पड़ा है उसको साधन भक्ति के माध्यम से क्लियर करना पड़ता है। और वो कैसे हो सकता है गुरु कर दे वो कार्य। गुरु आपको कहते हैं ये डू इट डू दिस डू दैट। आप कहेंगे गुरु जब भी तो वो डू इट डू दिस डू दैट में मैं चल रहा हूं तब कब जाके मेरा ये होगा। दिस इज द प्रॉब्लम। इसलिए क्या करना पड़ता है उत्साह निश्चयात धैर्यात। अगर आप राधा कुंड में रहना चाहते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि रूप गोस्वामी ने श्लोकों की सिक्वेंस में ये श्लोक क्यों बाद में रखा है। इसका अर्थ होता है कि सबसे पहले हमें एक नंबर का श्लोक पालन करना पड़ेगा दो नंबर का श्लोक अच्छे से पालन करना पड़ेगा तीन नंबर का श्लोक। इस तरह से हम जब इस सारे श्लोकों का अच्छे से पालन करेंगे फिर राधा कुंड में रहने का सपना देख सकते हैं या वृंदावन में रहने का सपना देख सकते हैं। बाकी भले फिजिकली हम वृंदावन में रहे इसे थोड़ा बहुत प्रभाव होगा लेकिन बड़ी मुश्किल होती है। कई बार कुछ लोग होते हैं वो वृंदावन में जाकर के गलतियां करते हैं उसको लात मार के निकल दिया जाता है वो खुद खुद ना खुद ही निकल जाता है। जैसे प्रभुपाद हमारे रोल मॉडल है। एक बार प्रभुपाद ने भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जानते हो आप यू नो एनीबडी भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज
डॉक्टर टी डी सिंह
तो भक्तिदानंद इंस्टीट्यूट जो है वो उन्होंने ही वॉज अ लीडर ऑन दैट साइंटिफिक बेसिस पर कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार करना। प्रभुपाद जी ने भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज को कहा था कि जीवन जीवन से आता है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ जीवन का मूल है जीवन जीवन का स्रोत है जीवन। इसका प्रचार करके जब आप विश्व के वैज्ञानिकों को परास्त करोगे उस दिन आपको उस यू नो दैट विल लीड यू आपका वृंदावन का व्रज का जो असली स्वरूप है ना तब आपको पता पड़ेगा। प्रभुपाद से लाइक दिस तो प्रभुपाद को फॉलो करके उनके आदेश का पालन कर गया गुरु के आदेश का पालन करके आप राधा कुंड को देख सकते हो। राधा कुंड में अगर हम ऑफेंस भी करेंगे तो हम तो डिजास्टरियस बन जाएंगे। तो ऑफेंस नहीं करना है पूरा श्रद्धा होना और इच्छा होना ये तीन चीज होती है तब राधा कुंड के महिमा को हम समझ पाएंगे उसका पूरा फायदा भी हम उठा पाएंगे। प्रभुपाद स्वयं भी तो चले गए थे पूरे विश्व का प्रचार करने के लिए राधा कुंड का ही प्रचार करने के लिए। So, Prabhupada wrote in one of the lines, when one becomes serious to follow the mission of the spiritual master, his resolution is tantamount to see the Supreme Personality of Godhead. इसलिए अपने आध्यात्मिक गुरु के मिशन के प्रति जीवन को समर्पित करना ये तरीका हमें हमारी परंपरा ने सिखाया है। चैतन्य महाप्रभु ने श्री गोस्वामियों ने भक्तिविनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद से ये तरीका है। दिस इज द वे टू गेट एब्जॉर्ब इन द लविंग सर्विस ऑफ राधा कुंड। कुछ लोग कहते हैं भक्तों कि राधा कुंड में रहना है राधा कुंड में रहना चाहिए प्रभु ये तो हमारे तो मन होता है तो महीने में एक बार चला जाता हूँ राधा कुंड गोल्डन दैट इज गुड थिंग नॉट बैड बट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट इज टू डेडिकेट एंटायर। प्रभुपा यूज टू से आई एम नॉट ओल्ड इनफ येट टू गो एंड रिसाइड एट राधा कुंड। मैं अभी उतना वृद्ध नहीं हुआ हूं कि मैं राधा कुंड पे जाकर रहूं। बेटर आई वुड डाई ऑन द बैटलफील्ड। मैं कृष्ण के लिए युद्ध करते 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 शरीर त्याग करना वो ज्यादा प्रेफर करूंगा। प्रभुपाद सेड लाइक दिस एंड द अदर डिवोटीज़
then what about us? So like this. कौन जा सकता, कौन भजनानंदी बन सकता है? देखो दो प्रकार के भक्त होते हैं, वो तो भजनानंदी भक्त, दूसरा होता है गोष्ठियानंदी भक्त। तो भजनानंदी कौन हो सकता है? प्रभुपाद तो मना करते हैं, भक्तजन सरस्वती मना करते, तो हम भजनानंदी नहीं बनना चाहिए। तो फिर भजनानंदी केवल वही भक्त बन सकता है जिसको गुरु आदेश दे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहती बाद में, तब वो भजनानंदी बन सकता है। और प्रभुपाद को फॉलो करके हमें जैसे हमने अभी अभी चर्चा किया, प्रीचिंग, मैनेजिंग, इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए एट आवर स्टेज। जैसे हमने आपको बताया अभी कि एनओए एनओडी, ये उसमें अगर आप देखोगे तो शुरुआत इसी तरह से होती है ग्रंथ की शुरुआत, इवन चैतन्य चरितामृत उसकी शुरुआत इसी तरह से होती है कि पहले आपका हृदय का कचरा निकाला जाए, तब जाके उत्तम प्रकार की बात को बताई जाती है। इवन श्रीमद भागवतम दसवां स्कंद लाने से पहले नौ स्कंद में हमें इस बात को गहराई से समझाया जाता है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वाचो वेगम, सेल्फ कंट्रोल, ये सब चीज रूप गोस्वामी ने सबसे पहले बताई। तो इसलिए वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड राधा कुंड। वी आर नॉट अगेंस्ट राधा कुंड एंड वी आर नॉट अगेंस्ट टू स्टे देयर, बट वी आर सपोज टू गो इन अ प्रोसेस राधा कुंड, बिकॉज फिर सस्ता माल मिलेगा, क्या फायदा, जाकर घूम के वापिस आ जाओगे। राधा कुंड को कान से देखने का प्रयास करो, आंख से देखने का प्रयास मत करो, अधिक सुनो। हियर मोर अबाउट राधा कुंड, हियर मोर अबाउट कृष्णा, हियर मोर अबाउट हाउ आई कैन इम्प्रूव माई चैंटिंग, किस तरह से मैं माला का जब ध्यान से कर सकता हूँ। दैट विल हेल्प अस टू सी राधा कुंड। राधा कुंड में आज जो लोग रहते हैं हम उनको नहीं जानते, क्योंकि गुरु ने उनको आदेश दिया है राधा कुंड में रहने के लिए, खुद ना खुद गए हैं या फिर भक्ति में एकदम उत्तम कोटि में बढ़ने के लिए गए। वी नेवर नो, आई नो कुछ भक्त है, एक डिवोटी थे मायापुर में रहते थे, काफी समय से मायापुर में रहते थे, बहुत अच्छा सेवा करते थे, मैं उनको जानता था व्यक्तिगत रूप से, कई बार मैं उनको मिला था। एक दिन मैं राधा कुंड में ऐसे गया था जून जुलाई के टाइम में, एंड उनको मैंने उधर देखा, राधा कुंड मैंने आप यहाँ पर, और उनका पहरवेश देखा तो उनको जैसे बिल्कुल कपड़े वपड़े बिल्कुल बदल दिए, और ये क्या बना दिया अपना अपना हाल। तो बोला अब मैं राधा कुंड में रहता हूँ, राधा कुंड में सेटल हो गया। इतना अच्छा भक्त थे तुम, इतना अच्छा सेवा करते थे रोज विदाउट फेल, मॉर्निंग प्रोग्राम सब कुछ। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी, दैट वाज द मूड ऑफ श्रील प्रभुपाद, एंड दैट इज द मूड वी आर सपोज टू कैरी ऑन। व्हाट इज द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी? तव कथामृतम तप्त जीव तप्त जीवनम, दिस इज राधा रानी मूड। बंद करें बात करो। सो वी शुड गो एंड प्रीच अबाउट द ग्लोरीज। अब आप राधा रानी को कौन जानता था आज, इस्कॉन के इस्कॉन को छोड़ करके। वृंदावन फेमस हुआ है प्रभुपाद के प्रचार के कारण, राधा कुंड फेमस हुआ है प्रभुपाद के प्रचार के कारण। विदेश के लोग कब जानते थे गोवर्धन को, राधा कुंड को? So the idea is that we should supposed to preach the glories of Srimati Radharani. And that is the best service we can do. That is Chaitanya Mahaprabhu's desire. That is Radharani's desire. So service unki ichcha se hoti hai ya hamari ichcha se hoti hai? Unki ichcha se hoti hai. So we follow you. If you are following Radharani, if you are following Chaitanya Mahaprabhu, then you are pleasing Radharani. Prabhupada ke pitaji, Prabhupada ko kehte the, sab logo kehte the, कि आप इस मेरे बेटे को ऐसे आशीर्वाद दो वो श्रीमती राधा रानी का महान भक्त बने। तो राधा रानी का महान भक्त बनने का क्वालिटी क्या होता है, ये प्रभुपाद ने खुद अपने आचरण से दिखाया। क्या कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की महिमा को, शिक्षाओं को, ये भगवान की करुणा को, कृपा को कोने कोने में पहुंचाना, दैट इज द वे ऑफ प्लीजिंग श्रीमती राधा रानी। इन अदर वर्ड्स, रासलीला में ज्वाइन होने का अर्थ है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। एक बार मैंने आपको एग्जांपल बताया था, राइट, यू रिमेम्बर?
एक भक्त ने प्रभुपाद को प्रश्न पूछा था, व्हाट इज दैट
अगेन,
सॉरी सुन नहीं पाया, इसका अनम्यूट कर। एनीवे हाँ यस प्रेम विलास बोलिए, मेरा वीडियो बंद कर दूं क्या, मेरा आवाज नहीं आ रहा है अभी, ठीक है
प्रभु जी आपकी तो क्लियर है, बाकी लोगों की नहीं आ रही है।
Why?
माता जी का आवाज नहीं आ रहा था, आपका तो एकदम क्लियर है।
ओके ओके, सो एनीवे आई मैं ही बता देता हूँ फिर। एक बार एक शिष्य प्रभुपाद के पास गए बड़ी इच्छा के साथ, और प्रभुपाद को जाकर के कहा कि प्रभुपाद एक प्रश्न है। प्रभुपाद ने कहा क्या है? प्रभुपाद ने कहा प्रभुपाद ये जो श्लोक है ना, निकुंज योनो रति के इसका अर्थ क्या है प्रभुपाद, समझाइए ना। तो उनको ऐसा इच्छा था कि प्रभुपाद कुछ बताएंगे, बोलेंगे कि गुरु को मंजरी के रूप में देखना चाहिए और गोपियों के रूप में देखना चाहिए, निकुंज लीलाओं में भगवान ऐसा सब ऐसा ऐसा लगा करके बड़े ऐसे ध्यान से सुनने के लिए प्रभुपाद के सामने। प्रभुपाद ने कहा इसका अर्थ बड़ा सिंपल है, क्या, यू गो ऑन द स्ट्रीट एंड डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। वो सोच रहा है व्हाट, प्रभुपाद से यस, देन ही अंडरस्टूड कि उसका जो आइडिया था वो अंडरस्टूड। प्रभुपाद वॉज वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी क्लियर दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडवांसमेंट। तो दिस वे वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट राधाकुंड, और जनरली राधाकुंड में रहने वाले लोग जो है ना उनको जज करने की आवश्यकता नहीं है हमें, कि ऐसा नहीं कि वो कितने महान है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन बाबा जी कौन नहीं है, दैट इज नॉट अवर बिजनेस। इसलिए राधाकुंड के निवासी जो है उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखना अच्छा है, क्योंकि हम उस अवस्था में है नहीं, हम अभी भी साधन भक्ति में है, और उसमें से कोई सही में कोई उत्तम भक्त है तो हम उसका अपराध करते हैं, या तो फिर कोई को सही लेंगे। इसलिए राधाकुंड जो निवास भक्त होते हैं उनको आप मन से आदर दो, उनके साथ मत करो, करो।
प्रभु जी योर वॉइस इज ब्रेकिंग, प्रभु जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है।
तो हो सकता है कि आप उनको बेटर दैट वी रिमेन अलूफ और वी कीप डिस्टेंस फ्रॉम डिवोटीज ऑफ स्टेइंग एट राधाकुंड। इज दिस बेटर, वॉइस इज क्लियर नाउ?
यस प्रभु।
So we can go to the last book of this chapter, this book, text number 11. Before that, any question?
Bhajanandi or dusra kaun sa bola aapne? Do?
Goshtyanandi.
Huh? Can I ask?
Goshti, Goshtyanandi, Goshti. Jo Goshti mein rehna chahta hai. Goshti ka arth hota hai samuh, bhakton ke saath rehna. Okay, no question. So, text number 11.
Sure, Prabhu, can आप आपको चार प्रकार के जो उत्तम भक्त है उसका description, उसका name बता सकते ना?
चार प्रकार के उत्तम भक्त?
इन चार प्रकार के सन्यासी होता है ना?
वो सन्यास categories?
Yes.
Okay, सन्यास category वो कुटीचक, कुटीचक बहुदक, परिव्राजक एंड परमहंस,
सेकंड इज बहु लक
बहुदक
बहुदक अच्छा ओके थैंक यू बिल्कुल
ओके टेक्स्ट नंबर 11
अनेक आमोद की वस्तुओं तथा व्रज भूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि हैं। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मनुष्यों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णता प्रकट हो जाता है।
Now we can hear, this is the last श्लोक of Srimad Upadeshamrit. इसमें very clearly we understood कि ये इतना महिमाशाली है, इतना उत्तम स्थान है कि इसको साधारण रूप से कोई समझ ही नहीं सकता। इवन महान भक्तों के लिए भी यहाँ इसकी महिमा को समझना बड़ा मुश्किल है। That is given here, right? सामान्य निसंदेह राधाकुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। तो राधाकुंड तो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं और भक्तों को भी नहीं मिलता है। भक्तों में भी अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, बट सबको ये स्थान नहीं मिलता है। पांच पांडवों को राधाकुंड में रहने का इच्छा था तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। हमें रहना है तो फिर भगवान उनको आशीर्वाद दिया। तो इसलिए बड़े बड़े भक्त लोगों को भी लाइन में लगना पड़ता है राधा कुंड की कृपा प्राप्त करने के लिए। वो राधा रानी है ना, सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, सभी उत्तम प्रकार की सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए राधा कुंड अनपैरेलल, उनकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। जिस तरह से राधा रानी की तुलना उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, इस तरह से राधा कुंड जो है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। राधा कुंड में स्नान करना जो है उसको मना नहीं किया गया है, लेकिन हम उसकी चेतना में स्थिर नहीं। एक बार हमारे राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि राधा कुंड में स्नान इसलिए नहीं करते भक्त, इस कौन के भक्त, क्योंकि प्रभुपाद ने एक बार मना किया था। क्यों मना किया था? क्योंकि कुछ शिष्य विदेशी भक्त नए नए थे और प्रभुपाद ने देखा वो लोग स्विमिंग पूल में जैसे स्नान करते हैं वैसे राधा कुंड में स्नान करने लगे, तो राधा कुंड का अपमान होता है इससे, वो प्रॉपर मूड नहीं है। इसलिए प्रभुपाद सेड यू डोंट नीड टू टेक बाथ इन राधा कुंड, बाहर से बैठ करके थोड़ा पांचल डाल लो तो एटलीस्ट आप उसकी महिमा को समझ पाओगे, उसका आदर बनाए रखोगे कि राधा कुंड इज नॉट ऑर्डिनरी प्लेस। देयरफॉर इट्स नॉट बेनेडिक्ट, ऐसा बैन नहीं है, फॉरबिडन नहीं है राधा कुंड में स्नान करना इस कौन के लिए, रादर इट इज टू बी प्रॉपरली डन अंडर डायरेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर विथ प्रॉपर कॉन्सियसनेस। गुरु आज्ञा लेनी पड़ती है और प्रॉपर चेतना से और पूर्ण रिस्पेक्ट के साथ उनको आदर दिया जाए, देन वे यू कैन टेक बाथ, अदरवाइज नॉट। इट्स अ मैटर ऑफ एटीट्यूड, द एटीट्यूड नीड टू बी चेंज, द क्वालिटी ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड की क्वालिटी डायलॉग करनी पड़ती है साधारण भक्ति के माध्यम से, जो एक श्लोक नंबर 1 से 7 में बताया था, 1 से 10 में, उस प्रकार की क्वालिटी को एक्सेप्ट करने से उत्तम भक्ति तक हम पहुंच पाएंगे एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड। जैसे श्रद्धा साधु संगादि शुरू शुरू में आपको बताया था कि पहले जो 3 श्लोक है वो श्रद्धा के लिए खास करके, और पहले 7 श्लोक है वो स्वैधी भक्ति साधन भक्ति तक है। पहला श्लोक है मध्यम अधिकारी का लक्षण है और बाकी 2, 3, 4 जो 6 चीज है वो मध्यम अधिकारी की प्रैक्टिसेस। फिर 4, 5, 6 श्लोक जो है वो साधु संघ में आता है। 7वां श्लोक है भजन क्रिया से रुचि तक, जैसे हमने एक बार आपके चर्चा किया था बीच। और भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं 5 से लेकर के 8, 5, 6, 7, 8
चार श्लोक है वो भक्त का आंतरिक मूड और विजन बताता है। आठवें श्लोक से रागानुगा भक्ति शुरू होती है और आसक्ति शुरू होती है। 9, 10 और 11 ये भाव और प्रेम भक्ति में डिवाइड है, खास करके प्रेम भक्ति 11 में। तो दिस वे वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस में ये पूरे उपदेशामृत ग्रंथ को प्रस्तुत किया गया है रूप गोस्वामी के द्वारा। एंड देन साधना भक्ति से धीरे 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 गुरु की कृपा से, वैष्णव की सहायता से और शास्त्र की कृपा सहायता से, मनुष्य साधना भक्ति से धीरे धीरे भाव भक्ति और भाव भक्ति से फिर आगे जाकर के प्रेम भक्ति तक पहुंच सकता है। तो there is no harm, प्रभुपाद एक रूम कन्वर्सेशन में बोले थे, there is no harm but they should understand what is राधा कुंड, राधा कुंड क्या है वो समझना चाहिए, and how to deal with राधा कुंड। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में कैसे रहना ये सिखाए थे। राधा कुंड और गोवर्धन एरिया के जो मेन जो गुरु है या मेन जो आचार्य है वो है रघुनाथ दास। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानि कृतौ, राधा कुंड की परिक्रमा करते थे, नाम गान नति भी प्रणाम करते थे, यू नो, और दंडवती भी करते थे। दैट इज राधा कुंड वासी। केवल नाम संख्या पूर्वक, केवल नाम का जप नहीं करते थे संख्या पूर्वक प्रॉपरली, और सॉलिड नाम चैंटिंग करते थे शुद्ध नाम बिल्कुल सुन करके, ओबेसेंसेस वो हजार प्रणाम यू नो करते थे भक्तों को इस तरह से, वैष्णव भगवान को हजार बार प्रणाम करते थे, तो ऐसे संख्या पूर्वक प्रणाम भी करते थे। दैट इज राधा कुंड, सो मच वैराग्य ही शोड। उन्होंने इतना वैराग्य दिया था कि वो केवल पहले शुरू शुरू में तो उन्होंने खाना पीना बहुत कम कर दिया था, फिर केवल फूल फल खाते थे। जैसे जैसे एक एक सन्यासी जाते थे, रघु रूप सनातन रूप गोस्वामी तिरुबाहुआ, सनातन गोस्वामी तिरुबाहुआ, तो एक एक करके धीरे 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 उन्होंने खाना वाना सब कुछ छोड़ते गए। बाद में वो केवल छाछ पीते थे, बटर मिल्क छाछ पीते थे। वो कितना पहले एक दोना पीते थे छाछ पूरे दिन का 24 घंटे का, फिर एक दोना में से धीरे 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 3 ड्रॉप तक आ गए। तो वो उसमें भी राधा रानी के प्रति उनका तीव्र सेवा था रघुनाथ दास गोस्वामी का। एक दिन एक भक्त रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए एक बड़ा कटोरा पत्ते दोना लेके आया था, उसमें छाछ भर करके। तो ये शिष्य तो सोच रहा, भक्त तो सोच रहा था कि एक ही दोना पीते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो फिर थोड़ा बड़ा ही दोना देते हैं ना, तो अधिक क्वांटिटी में पी सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा कि दोना बड़ा है उसमें चास भरी है, तो पहले तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि अच्छा इतना बड़ा दोना लेके आए तुम, तुम्हें इतना सारा चास आ गया। तो फिर पूछा उन्होंने ये कहाँ से लेके आई दोना तुम, तो बोले बस यहीं पास में से लेके आया। अच्छा भाई, पास में तो ऐसा कोई पेड़ है ही नहीं जिसमें इतने बड़े पत्ते बनते हो, इसमें इतना बड़ा दोना बनता है, ऐसा कोई तो है ही नहीं, कहाँ से लेके आए। तो वो भक्त का वो सखी स्थली से लेके आया। सखी स्थली, तुरंत उन्होंने वो जो दोना था वो फेंक दिया छास के साथ पूरा, और मैं नहीं लूंगा। तो वाई ऐसा, क्योंकि उन्होंने, क्योंकि जो सखी स्थली है वो चंद्रावली का गांव है और राधा रानी का जो भक्त है वो स्पिरिचुअल कंपटीशन है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ऑलवेज इतने समाधि में रहते थे, सखी स्थली का नाम सुन के ही उनको उन्होंने फेंक दिया। सो देयर इज अ हायर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, बट ही वाज इतना वैरागी, सोते 24 घंटा निरंतर, एक बार मन से रघुनाथ दास गोस्वामी एक बार मन से भगवान को खीर अर्पण किया, बहुत अच्छा खीर अर्पण किया, मन से अर्पण किया था। तो एक बार मन से उन्होंने वो प्रसाद खाया था, बाहर तो खाते ही नहीं थे, लेकिन मन से एक बार उन्होंने थोड़ा खीर प्रसाद खाया, खीर और रबड़ी, बड़ा अच्छा लगा उनको, तो थोड़ा और खाया, थोड़ा और खाया, थोड़ा और खाया, और पूरा खा गए, पूरा मटका भर के रबड़ी खा गए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी रोज सुबह करीब 10 बजे के करीब बिस्तर से, रोज दिन में एक बार या दो बार रघुनाथ दास गोस्वामी रोज आते थे, 3 घंटा तक चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य लीला बताते थे, जिसपे कृष्णदास कविराज भी बैठते थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी ये चैतन्य लीला सुनाते थे, और ये जो वल्लभाचार्य सुनाया ना आपने नाम, विठल वल्लभाचार्य जो संप्रदाय, उनका मंदिर था वहां पर मथुरा में, तो उनका बेटा था विठलनाथ वल्लभाचार्य का, विठलनाथ वो भी रघुनाथ दास गोस्वामी के पास आता था निरंतर तो उनका एसोसिएशन लेने के लिए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि रघुनाथ दास गोस्वामी कथा करने आए ही नहीं बार, तो एक भक्त ने उनको पूछा, कई लोगों ने कहा बाबा बाहर नहीं आए, बाबा 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 कुछ आवाज ही नहीं दे रहे, भक्तों को शंका हो गई क्या हो गया। तो विठलनाथ को बुलाया, जवान था वो और उसका बहुत शहर में रहता था, बहुत सारे लोग जानते थे उसको, तो वो वैद्य को लेकर आओ। तो विठलनाथ आए वैद्य को लेकर के, और वैद्य ने चेक किया रघुनाथ दास गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी वैद्य ने कहा कि सब लोग जानते थे इनको, कहा वैद्य ने कहा कि इनको इनडाइजेशन हो गया है, इन्होंने बहुत रबड़ी खा ली। तो सब भक्तों के ना 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 गलत बात है, गलत बात है, कोई खाते ही ये तो केवल छास पीते है, वो भी एक दो दोना पीते बस और कुछ नहीं है। तो बाद में फिर एक दो भक्तों ने कहा उनको कि बोले ऐसा नहीं है, वास्तविकता कुछ अलग ही होगी, मन से उन्होंने कुछ खाया। फिर रघुनाथ दास खुद बताया कि भगवान को खीर अर्पण किया था, वो थोड़ा ज्यादा खा लिया था, इसलिए इट हैपेंड लाइक दिस। सो दैट इज द पॉइंट। सो प्रभुपाद सेड अबाउट रघुनाथ दास दैट वाओ, ही शोड द वैराग्य, वैराग्य इज इम्पोर्टेंट, वैराग्य इज सो इम्पोर्टेंट कि उसके माध्यम से ही राधा कुंड की महिमा जानी जा सकती है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को चुना गया था चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, और रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग्य में नंबर 1 थे। कैन सी सो सो विरक्त, रघुनाथ दास इतने विरक्त थे शुरू से ही, वाज वेरी रिनाउंस्ड, दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट क्वालिटी, सो मच वैराग्य दैट वाज सर्विंग राधा को। एक जगह प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे श्रीमद गोरखपुर में श्रीमद भागवतम पर, एंड प्रभुपाद सेड दैट अगर आप उपनिषद और वेदांत की फिलोसॉफी की चर्चा करते हो तो जो राधा कुंड में रहने वाले हैं वो लोग नहीं आएंगे, कई बार सुनते नहीं। आई मीन द पॉइंट इज दैट राधा कुंड में रहते हैं लेकिन नहीं रहने के बराबर है। कैसे? इस प्रकार के लोग। प्रभुपाद सेड आई हैव सीन इट। 1934 में मेरे गुरु महाराज कभी कभी राधा कुंड में रहते थे कुछ समय के लिए, और वो उपनिषदों की चर्चा करते थे वहां पर रह करके। तो कहीं वहां के जो लोकल बाबा जी से राधा कुंड के प्रभुपाद से, वहां ऐसे भी बहुत सारे बाबा जी रहते भी अभी भी, वो उस समय भी रहते थे अभी भी रहते हैं, तो कुछ उसमें से कुछ आए वहां पर और उन्होंने देखा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए हैं, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा गौड़ीय मठ का स्थापना करने वाला, तो चलो जाके सुनते हैं उनके विषय में, उनकी बात सुनते हैं। तो क्यूरियोसिटी से वो लोग आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो उपनिषद की चर्चा कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत से, तो धीरे 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 आना बंद कर दिया। तो फिर प्रभुपाद कहे कि मेरे गुरु महाराज रिकमेंडेड दिस कि ये लोग एक्चुअली राधा कुंड में रहते नहीं है, वो लोग राधा कुंड नहीं लेकिन नरक कुंड में रहते हैं। प्रभुपाद सेड दैट आई हैव हर्ड दिस थिंग पर्सनली फ्रॉम हिज माउथ। तो द आइडिया इज वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति राधा कुंड को समझता है देन ओनली ही कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ राधा कुंड। रूम कन्वर्सेशन 1977 में आप जानते हो
बाबा जी महाराज का मैंने आपको बताया था, आई डोंट नो वेदर यू रिमेम्बर, नवंबर महीने में जब प्रभुपाद शरीर छोड़ने ही वाले थे, तो उस समय प्रभुपाद ने राधा कुंड के प्रति अपना आकर्षण बताया था। वो जो बाबा जी महाराज आए थे तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि गोवर्धन परिक्रमा अगर मैं नहीं कर सकता तो तुम मेरी ओर से जाओ और तुम परिक्रमा करो और तुम राधा कुंड में मेरी ओर से स्नान करो। तो तमाल कृष्ण महाराज से दैट विल गेट यू बेटर प्रभुपाद, आप पर्सनली जाकर के भी स्नान कर पाएंगे। तो लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि लेट्स सी, दैट्स ऑल राइट। तो प्रभुपाद वाज हिमसेल्फ वाज हैविंग स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर राधा कुंड। तो कौन रहेगा राधा कुंड में? जो टॉप मोस्ट डिवोटीज है, अगर वो थर्ड क्लास डिवोटीज के साथ मिक्स करेगा तो राधा कुंड में कैसे रह पाएगा? राधा कुंड राधा रानी में कोई अंतर है ही नहीं। हाउ कैन यू, प्रभुपाद सेड, हाउ कैन यू जंप ओवर राधा रानी? राधा कुंड राधा रानी नॉन डिफरेंट। How can you enjoy Radha Kund by swimming? You cannot touch with your feet even Radha Kund. आप Radha Kund को पांव भी नहीं लगा सकते। You take just little water and keep it on your head. यही Radha Kund को respect देना है। That is Radha Kund consciousness, highest Radha Kund consciousness. To follow the guru instruction of the spiritual master. And this is that same place. ये राधा कुंड वही स्थान है जहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को कहा था। व्हाट इज दैट? प्रभुपाद पर्सनली रोट अबाउट दिस इन वन ऑफ द लेटर्स। आई हैव नो पर्सनल क्वालिफिकेशन, मेरा अपना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आई सिंपली ट्राई टू सेटिस्फाई माय गुरु, दैट्स ऑल। मैंने केवल मेरे गुरु महाराज को संतुष्ट करने का प्रयास किया। मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा था, इफ यू गेट सम मनी अमार इच्छा छिलो किछु बाय कराना। जब तुम्हें कभी कोई धन मिले तो पुस्तकें छापना, ग्रंथों को प्रकाशित करना। सो देयर वाज अ प्राइवेट मीटिंग टॉकिंग, सम ऑफ माय इंपॉर्टेंट गॉड ब्रदर्स वेर देयर। राधा कुंड में मेरे कुछ इंपॉर्टेंट गॉड ब्रदर्स है उस समय, और फिर मैंने उनके मुख से निकला हुआ ये वचन है उसको ग्रहण कर लिया। मेरे गुरु महाराज पुस्तकों के बड़े शौकीन थे, वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स, और उन्होंने पर्सनली मुझे कहा था कि जब तुम्हें ग्रंथ मिले, पैसा मिले, तो ग्रंथ का प्रकाशन करना। Therefore, इसीलिए मैं इस बात पर बहुत बल देता हूँ, वेर इज बुक, वेर इज बुक, वेर इज बुक। तो कृपा करके आप मेरी सहायता कीजिए, ये मेरी विनती है आप सबसे। जितनी हो सके उतनी अधिक ग्रंथों का प्रकाशन हो, अधिक से अधिक भाषाओं में जितना हो सके उतना, और पूरे संसार में, पूरे विश्व में इसको वितरित किया जाए। Then the Krishna consciousness movement will automatically increase. और इस तरीके से ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है वो अपने आप फैलेगा। तो गोपियों के लिए कृष्ण का प्रेम जो है उसको डेवलप करना, इसका एकदम सीधा तरीका है। प्रभुपाद ने बताया क्या? To spread Krishna consciousness movement all over the world. ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन जो है उसको विश्व के हर कोने में पहुंचाने का जो कार्य है उसको हमें, उसके लिए हमें अपने आप को समर्पित कर देना। जीवन आते जाते रहते हैं लेकिन अवसर नहीं मिलता ऐसा, ये अवसर जो मिल गया उसको पकड़ लीजिए और उसके प्रति समर्पित हो जाइए। दिस इज द बेस्ट वे वी कैन सर्व, चांट हरे कृष्ण एंड स्प्रेड हरे कृष्ण। दिस इज अवर कंक्लूजन। In this way, we can understand Radha Kund, and of course, this is the essence of the entire book of this Upadeshamrut, how we can improve Krishna consciousness. So, like this, we end up here the entire book of Upadeshamrut, and also entire next Bhakti Sastra course. We are ending here. Wonderful syllabus, and it was very nice points Prabhupada has made in throughout all these four books, and this is going to give wonderful, very perfect direction and guidance. Is tarah se hum aage badh sakte hain. So, any question in this last sloka?
Prabhupada,
जो आपने अभी एग्जांपल दिया रघुनाथ दास गोस्वामी का और उनका पास्ट टाइम बताया और बीच में भी आपने कई सारे ऐसे पास्ट टाइम बताए, तो ये सब चैतन्य चरितामृत में मिलेंगे?
नहीं, सब तो चैतन्य चरितों में नहीं है, कुछ और जैसे कुछ भक्ति रत्नाकर में है, कुछ और कथा और ग्रंथ में, इस तरह से अलग अलग ग्रंथों में है।
ओके, क्योंकि जैसे कि हमें तो इतना वाइड ये सब इतना पास्ट टाइम तो हमने तो आपने ये सब मतलब ये कोर्स के लिए ऐसा सेलेक्ट किया है या फिर आपको मतलब याद है?
नहीं नहीं, दिस इज नॉट फ्रॉम योर सिलेबस, ये तो मैंने रघुनाथ दास गोस्वामी की महिमा को और बढ़ाने के लिए, उनका गुणगान गाने के लिए मैंने एक तो पास्ट टाइम।
ठीक है प्रभु जी, आपको इतने सारे पास्ट टाइम अलग अलग मतलब ये सब आप ये इतना सब याद या फिर उस टाइम पे रिकॉल किस प्रकार कर पाते हैं?
ये बस प्रभुपाद जैसे बताया कि आपको प्रयास करना है ताकि क्या बोल रहा है।
हरे कृष्ण,
वन बाय वन, यस।
जो राधा कुंड में जो निवास करते हैं, कुछ लोग जिनके बारे में बताया जिनको सुनने में रुचि नहीं है, तो उनके ऊपर राधा रानी कभी कृपा नहीं करेगी या करती नहीं है? जो ऐसी जो जिनको जरा भी रुचि नहीं बट फिर भी बरसों से वहां रहे जा रहे हैं, तो उसका उनके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है?
जैसे प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल दिया कि एक खटमल होता है वो भी राजा के आसन पे बैठ सकता है और राजा भी राजा के आसन पे बैठ सकता है, सिंहासन पे, लेकिन जो खटमल होता है वो राजा के एकदम पास में होता है, राजा के बिल्कुल आसन पे होता है, लेकिन वो राजा को काटता है। तो इसलिए राधा कुंड में रहना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन राधा रानी की इच्छाओं के आधार पर जीवन जीना ये इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स रहने का बहुत फर्क पड़ता है, जैसे अगर आप भी रहना चाहते हो तो आप भी देखते हो ना कि कौन सी बस्ती में रहते हो, कितने लोग हमारे आसपास में है, लोग चाहते हैं कि हमारे आसपास का घर के आसपास पेड़ पौधे हो, ये हो, वो लाइक दिस, यू नो, एवरीवन लाइक टू स्टे इन बेटर प्लेस ऑफ कोर्स। तो ये राधा कुंड का महिमा अवश्य है, वृंदावन राधा कुंड उसमें रहना वो हमेशा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पॉइंट स्थान का नहीं है, कॉन्शियसनेस का है, चेतना। भक्तिवंत ठाकुर स्पष्ट रूप से बताए कि धाम में चेतना से रहा जाता है, शरीर से नहीं रहा जाता। अगर आप चेतना से रहते हो फिर अगर आप शरीर से रहते हो तो दैट इज इवन बेटर, लेकिन अगर आप शरीर से रहते हो लेकिन चेतना से नहीं रहते तो वो राधा कुंड में नहीं रहने के बराबर है। जैसे एक फिल्म होती है, फिल्म एक पर्दा आ जाता है राधा कुंड के ऊपर, तो जो लोग चेतना नहीं है जिसकी, वो लोग राधा कुंड में रहते हैं तो उस पर्दे के ऊपर रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम लोग राधा कुंड में रहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो राधा कुंड को टच भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सही में चेतना से रहते हैं, जो लोग परंपरा के आधार से रहते हैं, वो लोग उस पर्दे के नीचे आ सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दे कैन एक्चुअली स्टे इन राधा कुंड। इसलिए टू स्टे इन राधा कुंड फिजिकली इज नॉट सफिशियंट, भले लोग अभिमान करे, लोग इसका अपने आप को बड़ा गर्वित माने या फिर भाग्यशाली माने, लेट देम। द आइडिया इज दैट राधा कुंड में रहने का अर्थ होता है टू फॉलो व्हाट राधा रानी वांट्स, टू फॉलो व्हाट चैतन्य महाप्रभु वांट्स, व्हाट रूप गोस्वामी वांट्स, दैट इज द वे टू स्टे एंड लिव इन राधा कुंड। वो लोग रहते हैं, इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत मुश्किल होता है कि राधा कुंड में रहने वाले में से कौन सही है कौन गलत है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि उनसे दूर रहा जाए और उनके साथ किसी प्रकार का इंटरेक्शन ना किया जाए, दिस इज द बेस्ट वे।
हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, जब हम लोग राधा कुंड जाते हैं तो हम लोग पानी छिड़कते हैं सिर पे, पर क्या अपना माला भी अंदर डिप कर सकते हैं उसमें?
या माला डिप करने में वो और कृपा, राधा कुंड का कृपा माला पर आती है। इसका एक्चुअली उद्देश्य क्या है कि आप जो चैंटिंग करोगे वो चैंटिंग आज तक तो मैं इतना अच्छा चैंटिंग नहीं किया था, लेकिन काश आज हमारी प्रार्थना राधा रानी सुन ले गुरु परंपरा के माध्यम से, तो मेरा चैंटिंग अच्छा हो, मैं भगवान के नाम को सुन पाऊं। अभी क्या सुन नहीं पाते, तो सुनते सुनते चैंटिंग करना प्रॉपरली हियर बिल्कुल दैट इज
पर पाव तो डिप नहीं कर सकते ना पाव ना तो वी कैन नॉट बेद ऑल्सो
नो वी शुड टेक आउट स्टे आउटसाइड एंड पुट द वॉटर
आउटसाइड
एंड इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर देन यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ योर गुरु महाराज तीर्थ गुरु
ओके हरे कृष्ण
हरे कृष्णा
यस
प्रभु तो मतलब क्या हम ये एसेंस ले सकते हैं उपदेशामृत ग्रंथ का कि जैसे आपने बताया कि हमें टेक्स्ट वाइज लेना चाहिए फर्स्ट टेक्स्ट से लेके 11th टेक्स्ट तक तो मतलब क्या उसका हम एक समरी ऐसा ले सकते हैं कि आचार्यों का और गुरु के उपदेश का मतलब जितना हो सके उतना हम संपूर्णतः पालन करें
यस बिकॉज देखो ये ग्रंथ कितना सुंदर है कि श्लोक नंबर 1 से लेकर के श्लोक नंबर 11 में जो भी एक भक्त को आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट है वो सब उन्होंने बता दी कि क्या क्या करना पड़ता है क्या क्या करना चाहिए तो अगर इफ यू फॉलो वन बाय वन जैसे श्लोक 1 के ऊपर हमने फोकस किया श्लोक 2 के ऊपर फोकस किया ऐसे एक एक करके हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे जरूरी नहीं कि एक खत्म होगा फिर दूसरा पहले जो 7-8 श्लोक है उसको प्रॉपरली बार बार सुनना इसको प्रॉपरली समझना इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करना अभी तक क्या हमने तो आपको सिलेबस के आधार पर केवल समरी के रूप में प्रस्तुत किया लेकिन इसको तो डिटेल में चर्चा किया जा सकता है ये सारे उपदेशों को सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस देन द अल्टीमेट सक्सेस क्या आएगा आपको जो 9-10-11 श्लोक है पीछे के That success will come by itself. वो automatically आएगा आपके पास वो सफलता आपकी मिलेगी वो सफलता का अर्थ क्या है साधन भक्ति से भाव भक्ति से प्रेम भक्ति और ये इतना आसान नहीं है हमें पहले अनर्थों को पूरा खत्म करना पड़ेगा ये अनर्थ निवृत्ति होएगी हमारी रुचि बढ़ेगी निष्ठा बढ़ेगी जब हम अपराध करना बंद कर देंगे हमारा माइंड जो है वो डिस्ट्रेक्शन होना बंद हो जाएगा हमारी इच्छाएं नष्ट होना शुरू हो जाएगी भौतिक इच्छाएं तो हमारे आचरण में वो सारे गुण देखे जाएंगे जो एक वैष्णव में होते हैं जो 26 गुण शास्त्र का वैष्णव के जो गुण है वो सब उस तरह से धीरे 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 आध्यात्मिक प्रगति होगी और ये सब कुछ इसी जन्म में हो सकता है ये नहीं सोचना कि बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे लेकिन ये तब हो सकता है जब हम इसको विकसित करने के लिए बहुत ज्यादा सिंसियर है और ईगर है और हम शरणागत है जो भी हमें गुरु कहेंगे शास्त्र कहेंगे उसके सामने पूर्ण समर्पित फुल्ली सरेंडर देन ओनली इट इज पॉसिबल
ओके थैंक यू प्रभु और एक क्वेश्चन है जैसे यहाँ आपने एक जगह यहाँ बताया कि मतलब राधा कुंड की महिमा का प्रचार करना चाहिए सेवा करने जैसे सेवा करने का जो आया था वो क्वेश्चन मुझे ऑलरेडी था और आपने उसका आंसर दे ही दिया था मगर ऐसा मेरे साथ तो होता ही है कि मैं तो बहुत इनिशियल स्टेज पे ही मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ तो ये जो मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल राधा कुंड पे फॉर एग्जाम्पल कुछ हमें उपदेश देना है किसी को तो अभी मुझे लगता ही नहीं है कि मैं उसके योग्य हूँ कि मैं उसके बारे में कुछ बोल सकूँ या फिर द रिवर्स वे ऑल्सो कि मुझे कुछ सुनना है तो अभी मेरे लिए इतना कुछ सुनने के लिए जैसे आगे के 10 श्लोक है या उससे भी पहले के वो सब इतना इतना कुछ है सुनने के लिए तो राधा कुंड की महिमा को श्रवण करने पे फोकस करना चाहिए या वी शुड ट्राई एंड बिकम अ गुड डिवोटी फर्स्ट तो हाउ शुड वी टेक इट
इन अ वे एक्चुअली बोथ बट द फर्स्ट प्रायोरिटी इज to become a good devotee by improving our sadhana bhakti. That is the first priority. But iska arth ye nahi hai ki aap Radha Kund ki mahima ke prati हम अपने आप को उससे दूर रखने का प्रयास करें राधा कृष्ण की लीलाओं से, नॉट दैट वे। इसका उद्देश्य क्या है कि जब भी राधा कुंड या उस प्रकार की उत्तम भक्ति की बात आती है तो हमारे हृदय में एक प्रकार का मोटिवेशन, एक प्रकार का एंथुजियाज्म बढ़ जाता है कि काश एक दिन तो आएगा कि मैं उत्तम भक्त बन पाऊंगा और मुझे राधा कुंड की कृपा मिल सकती है, राधा रानी की कृपा मिल सकती है। इसलिए उनसे दूर भागने की आवश्यकता नहीं है, राधर उनके प्रति अधिक समर्पित होना और अधिक प्रार्थना करना। जैसे अगर आपके मन में अनेक बार आप राधा कुंड की महिमा सुनोगे तो क्या होगा, आप उत्तम, आपको राधा कुंड में रहने का इच्छा होगा या राधा कुंड की कृपा मिलने की इच्छा होगी। तो आप उसके लिए भी आपने पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया कि उसके लिए आपको अच्छा भक्त बनना पड़ेगा, तो अच्छा भक्त बनना पड़ेगा तो आप फिर क्या करोगे, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं बन पा रहा, तो क्या करोगे? आप जाएंगे गुरु महाराज के पास, आप जाएंगे विग्रहों के सामने और जाकर के सिर पटक पटक करके उनसे कृपा मांगेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि मुझमें परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है, मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। तो फिर वो जो भाव है, वो जो इच्छा है, जब वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, वो हमारी चेतना को शुद्ध करता जाएगा। एंड देन यू विल बी एबल, वो सामने लक्ष्य अभी भी वही है। पहले दिन भी आप राधा कुंड के विषय में सुनते थे और साध्य सिद्ध अवस्था में भी राधा कुंड ही आपका लक्ष्य रहेगा, लेकिन उसके बीच में जो प्रोसेस है उसको मोटिवेट करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए राधा कुंड की महिमा सुनने में आप उसमें और आपकी सहायता होती है। सो दैट शुड बी अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स राधा कुंड। प्रॉपर लास्ट में तात्पर्य क्या लिखते हैं, प्रॉपर लास्ट में क्या लिखते हैं, कंक्लूजन इज दैट टू लिव ऑन द बैंक्स ऑफ राधा कुंड एंड टू बेथ देयर डेली कॉन्स्टिट्यूट द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस। It is difficult position to attain even for great sages and devotees like Narad. Thus, there is no limit to the glory of Radhakund. By serving Radhakund, one can get opportunity to become an assistant of Srimati Radharani under the eternal guidance of the gopis. So that is the idea. That will come gradually. More questions?
हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रभुजी ये 84 लाख स्पीशीज के बारे में है तो मैं अभी पूछ सकती हूँ?
पूछ लीजिए
प्रभुजी। इसमें जैसे हमने शास्त्र में बताया है कि ह्यूमन बर्थ जो है वो जंक्शन जैसा है, उसमें से हम लोग प्रगति कर सकते हैं, लेकिन बाकी के सारे जो भी स्पीशीज है वो भोगवटो जैसा सफरिंग के लिए है, उसमें से आप नहीं जा सकते हैं प्रगति करके आगे। तो इसका मतलब ये है कि सपोज 9 लाख एक्विटीज है और 20 लाख ट्रीज है, इस तरह का जो भी कैटेगरीज है उसमें किसी ने किसी का जन्म गया सपोज एक्विटिक्स में, तो उसको वो सारे जैसे 7 लाख है और उसने 5 लाख वाला पोजिशन उसको मिला है तो 2 लाख उसको पूरा क्रॉस करके फिर वो आगे जाएगा। इस तरह से होता है कि एक स्पीसीज में बर्थ ले लिया तो वो पूरा एक्वेटिक वाला कैटेगरी खत्म हो गया और आगे प्रोग्रेस करेगा, इस तरह से होता है या कैसे?
शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति को बहुत ही डिसिसिव तरीके से उसको एक्सप्लेन करना ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का सेपरेट उसका होता है कोटा। इसलिए कुछ कर्म के परिणाम में आपको हो सकता है कि आपको एक ही जन्म में एक्वेटिक का लिया और फिर वापिस आ गए, जैसे नृग महाराज की कथा है तो नृग महाराज की कथा में उसको छिप के लिए लिजार्ड बनना पड़ा था वो एक जन्म के लिए। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट स्टैंडर्ड प्रोसेस ऐसा होता है कि ये सब नहीं होता है तो फिर उनको जो 84 लाख का जो क्रमशः ग्रेजुअल जो इम्प्रूविंग बॉडी होती है उसमें वो चले जाते हैं। इम्प्रूविंग बॉडी, जैसे हमने एक बार आपके चर्चा किया था कि चेतना का विकास होता जाता है वैसे वैसे शरीर अच्छा बनता जाता है, और जब चेतना अच्छे एकदम अच्छी प्रॉपर बन जाती है दैट बिकम्स मनुष्य, फिर मनुष्य के बाद फिर उसकी चेतना और डेवलप होती है, फिर वो अन्नमय प्राणमय उस तरह से और ऊपर चला जाता है। तो अकॉर्डिंगली दिस डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इज देयर, बट ऑफकोर्स जनरली उसको अगर वो कहीं पर भी गिरेगा तो उसको धीरे धीरे ऊपर लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10th फ्लोर पे थे, आपने हमारे कर्म ऐसे थे उसमें कुछ गलतियां की है, तो आपको क्या किया जाएगा कि भाई आपको 8 फ्लोर पे डाल दिया जाएगा, भाई 9 फ्लोर के ऊपर आपको 8, 9 फिर 10 कोई कुछ ने ज्यादा कुछ गलती किया है तो उसको 6 फ्लोर पे डाल दिया जाएगा, तो 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आना पड़ेगा। तो ये क्रमशः उसको ऊपर आना पड़ता है ग्रेजुअली, बट ये सारे नियम जो होते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं इसमें। जैसे अगर किसी गाय है या कोई गधा है या कोई अगर उसको वैष्णव का कृपा मिल गया, उसने हरि नाम सुन लिया, उसको प्रसाद खिला दिया, तो तुरंत ये बॉडी खत्म होने पर सीधा मनुष्य बन जाएगा। There are so many such rules and complexities of, you know, rules and regulations. So it is very difficult to ascertain, okay, what exactly one goes.
Thank you, Prabhuji. Hare Krishna.
Or Prashna? Okay. So, I thank all of you, आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल्सो। आप सब भक्तों ने इतनी गंभीरता से निरंतर सुना ये सारे लेक्चर्स एंड पार्टिसिपेशन एंड एक्टिविटीज, एंड आपकी बैच और अब पहले के बैच के भक्तों को भी बहुत विशेष आप आभार और धन्यवाद। इतने समय तक आप लोगों ने मुझे झेला, तो यू आर वेरी tolerant and merciful devotees, and at the same time हम आपसे क्षमा भी मांगते हैं कि जब से ये लॉकडाउन हुआ 3-4 महीने का, उसके कारण हमारी limitations हो गई, सबकी limitations हो गई, physical limitations और technological limitations, और हम आपके सामने